ओम श्री हरि द्वितीय परिच्छेद वाक्य स्वरूपम आह वाक्यम स्वाद योग्यता आकांक्षा सति युक्तः पदश्चयः योग्यतया पदार्थानां परस्पर संबंधे बधावभावः पदश्चयस्यैतद्भावेऽपि वाक्यत्वे वाहिना सिञ्चति यत् इत्याथपि वाक्यं स्यात् आकांक्षा प्रतीति पर्यवसान वीरः सच श्रोतु जिज्ञासा अरूपः निराकांक्षस्य वाक्यत्वे गौरस्व पुरुषो हस्ति इत्यादिनामपि वाक्यत्वं स्यात् आसतिर्बुद्धयः विच्छेदयः पदेन संगतिः स्यात् आसक्तिर्बुद्धि विच्छेदः बुद्धि विच्छेदयपि वाक्यत्वे इदानीमश्च ऋतस्य देवदत्त शब्दस्य दिनानन्तरो अरितेन गच्छति इति पदेन संगति स्यात् अत्र आकांक्षा योग्यतया योरात्मा अर्थधर्मत्वे अपि पदश्चय धर्मत्वम् उपचारात् अथ द्वितीयः परिच्छेदः नीलसरोरूहम् निगमगम्मितः गोकुलरमण इङ्गितकलितसुरेहवस् सततम् मम मानसे वाक्यम् रसात्मकम् वाक्यम्। यह पहले कह चुके हैं, इसमें वाक्य शब्द से क्या विवक्षित है इस उपोद्घात की संगति के लिए वाक्य का लक्षण करते हैं। प्रकृति सिद्धि अनुकूल चिंता विषयत्वमुपोद्धातः वस्तु विषय की प्रस्तुत वस्तु की के लिए जिसका विचार करना प्रसंग प्राप्त हो उसे उपोद्घात कहते हैं। यहाँ काव्य का लक्षण प्रस्तुत है, उसमें वाक्य का विचार प्रसंग प्राप्त है। वाक्यम इति आकांक्षा योग्यता और आसक्ति से युक्त पद समूह को वाक्य कहते हैं। योग्यता का लक्षण करते हैं, योग्य इति एक पदार्थ का दूसरे पदार्थ के साथ संबंध करने में बाध न होना योग्यता कहता है। जो पदार्थ जिस पदार्थ के साथ संबंध करने में बाधित न हो उसे योग्य कहते हैं। यदि योग्यता के बिना पद समुदाय को वाक्य माना जाएगा तो वाहिना सिंचति यह भी वाक्य हो जाएगा। योग्यता को कारण मानने से इसमें वाक्य का लक्षण नहीं जाता, क्योंकि सेचन क्रिया में अग्नि की साधनता बाधित है, अग्नि जलाने का साधन है सिंचने का नहीं। आकांक्षा इति किसी ज्ञान की समिति समाप्ति या पूर्ति का न होना आकांक्षा है। वाक्यार्थ की पूर्ति के लिए किसी पदार्थ की जिज्ञासा का बना रहना आकांक्षा कहलाता है। जैसे देवदत्तो ग्रामम इतना कहने से गच्छति इत्यादि क्रिया की आकांक्षा है, उसके बिना वाक्यार्थ ज्ञान का पर्यवसान नहीं होता। सच इति यह आकांक्षा भाव रूप है, अभाव रूप नहीं, क्योंकि अभाव का अभाव प्रतियोगी स्वरूप होता है। अतः प्रतीति जिज्ञासा के पर्यवसान का विरह भी प्रतीति रूप ही होगा। निरकांक्ष सेति आकांक्षा शून्य पद समुदाय को वाक्य माने तो गौरस्व पुरुषो हस्ति इत्यादि निराशा निराकांक्ष पद समूह भी वाक्य हो जाएगा। आसर इति बुद्धि अर्थात प्रकृत्योपयोगी पदार्थ की उपस्थिति के अविच्छेद अर्थात व्यवधान को आसक्ति कहते हैं। जिन पदार्थों का प्रकरण में संबंध होता है उनके बीच में व्यवधान न होना आसक्ति काल के आ जाने से आसक्ति कहलाता है। वह व्यवधान दो प्रकार से होते हैं, या तो एक पदार्थ की उपस्थिति के अनंतर बीच में अधिक काल के आ जाने से अथवा प्रकृति पौगी पदार्थ उपस्थिति के बीच में अनुपयुक्त पदार्थों के आ जाने से। पहले प्रकार का उदाहरण देते हैं बुद्ध विच्छेद इति, किस यदि बुद्धि विच्छेद होने पर भी वाक्यत्व स्वीकार किया जाए तो इस समय कहे हुए देवदत्त पद का दूसरे दिन बोले गए गच्छति पद के साथ संबंध होना चाहिए। यहाँ अत्यंत व्यवधान दिखाने के अभिप्राय से दिनांतर कह दिया गया है, वस्तुतः एक घंटा या इससे भी कम समय का बीच में व्यवधान होने पर भी किसी को उन पदों में संबंध का ज्ञान होना होता नहीं। दूसरे प्रकार का उदाहरण गिरिर्भुक्त अग्निमानम देवदत्तेन, यहाँ गिरिर अग्निमानम और देवदत्तेन भुक्तम ये दो वाक्य हैं। गिरि का संबंध अग्निमान के साथ है, उसके बीच में प्रकृति का वो अनुपयोगी भुक्तम पद का आपड़ा है एवं देवदत्तेन के पूर्व अनुपयुक्त अग्निमान व्यवधायक और हो गया है, अतः आसक्ति नहीं रही, अतएव वह वाक्य नहीं है। अत्र इति, यद्यपि पूर्वोक्त जिज्ञासा इच्छा रूप होने के कारण आत्मा में रहती हुई है और योग्यता पदार्थों में ही रह सकती है, तथापि ये दोनों उपचार परंपरा संबंध से पद समुदाय में रहती है, स्वजन जनकत्व संबंध के आकांक्षा पदों में रहती है। स्व शब्द से आकांक्षा गृहित है, उसमें जन्य वाक्यार्थ होता है और उसका जनक पद समूह होता है, अथवा स्वमेव यज्ञन्यम तजनकत्वेन अर्थ योग्यता स्वावश्रयोपस्थानकत्व संबंध से पदों के में रहती है। स्व शब्द से योग्यता उनका आश्रय पदार्थ उसका व्यवस्थापक उपस्थापक पद समूह होता है। इस प्रकार आकांक्षा योग्यता और आसक्ति ये तीनों पदों में रह सकती है, इनसे युक्त पदों को वाक्य कहते हैं। वाक्योच्चय, आकांक्षादि युक्त वाक्यों के समूह को महावाक्य कहते हैं। इत्थमिति, इस प्रकार वाक्य के दो भेद हुए, एक वाक्य दूसरा महावाक्य महावाक्य की सत्ता में प्राण देते हैं महावाक्य की सत्ता में प्रमाण देते हैं। स्वार्थ इति, अपने अपने अर्थ का बोधन करके समाप्त हुए वाक्यों का अंगांगी भाव संबंध से फिर मिलकर एक वाक्य महावाक्य होता है। तत्र इति, उनमें से वाक्य का उदाहरण शून्यम वास गृहम इत्यादि है और महावाक्य का रामायण रघुवंश आदि है। पद का लक्षण करने के लिए प्रसंग संगति दिखाते हैं। पदच्चय इति, पद समुदाय वाक्य होता है यह कह चुके हैं, उसमें पद का लक्षण करते हैं। वर्ण इति, प्रयोग के योग्य अनन्वित यह एक अर्थ के बोधक वर्णों को पद कहते हैं, जैसे घट यह वर्ण समुदाय प्रयोग के योग्य है। व्याकरण आदि से शुद्ध होने के कारण वाक्य में इसका प्रयोग हो सकता है और दूसरे पदार्थ से असंबद्ध अनन्वित एक अर्थ घोड़े घड़े का बोधक है, अतएव यह पद है। उक्त लक्षण का पदकृत दिखाते हैं। प्रयोग अर्हति, इस लक्षण में प्रयोगार्ह कहने से प्रतिपादिक की व्यवृत्ति होती है, केवल प्रतिपदिक जिसमें विभक्ति नहीं आई है प्रयोग के योग्य नहीं होता। महाभाष्यकार ने लिखा है नापि केवला प्रकृति ही प्रयोक्तव्या नापि केवला प्रत्ययः अन्वितेति, अन्वित कहने से वाक्य और महाकाव्य की व्यावृत्ति होती है, क्योंकि इनसे अन्वित अर्थ का बोध होता है अनन्वित का नहीं। एक इति, एक कहने से सकांक्ष अनेक पद कहने अनेक पद और अनेक वाक्यों के व्यवच्छेद होता है। अर्थ बोधक कहने से क च ट त प इत्यादि वर्णों का भी व्यवृत्ति होती है। यदि अर्थ न कहेंगे तो अर्थ के विशेषण अनन्वित और एक ये दोनों भी छोड़ने पड़ेंगे, अतः प्रयोगार्ह वर्णम पदम इतना ही लक्षण रहेगा। यह क इत्यादि सॉरी यह क च इत्यादि में अति व्याप्त होगा क्योंकि ये भी प्रयोग के योग्य होते हैं। प्रयोगार्हत वर्णों में ही होता है अर्थ में नहीं। वर्णा इति वर्णा इस पद में बहुवचन अविवक्षित है। यह आवश्यक नहीं कि बहुत वर्णों के होने पर ही पद हो, एक या दो वर्णों के भी अनेक पद होते हैं। उक्त पद लक्षण सॉरी अर्थो वाच्यश्च लक्ष्यश्च वंगश्चेति त्रिधा मतः एषां स्वरूपम् आह वाच्यो अर्थो अविधया बोध्यो लक्ष्यो लक्षणया मतः व्यंगयो व्यंजनया ताः स्युस्तित्तस्त्र शब्दस्य शक्तयः ता अविधाया सॉरी ता अविधाद्याः तत्र संकेत इतार्थस्य बोधनादग्रिमा अविधा उत्तम वृधेन मध्यम वृधम उद्दिश्य गमानय इत्युक्ते तम गवानयन प्रवृत्ति मम उपलभ्य वालस्य वाक्यस्व स्नानादिव अतिपिंडनयनमर्थः इति प्रथमं प्रतिपद्यते अनन्तरं जगाम अवधान अश्वमानय इत्यावदावाप योद्यपाभ्यां गोशब्दस्य शासनादिमानर्थ आनयन पदस्य च आहरणमर्थः इति संकेतम अवधारयति। कश्चिन् प्रसिद्धार्थ पदसम विहरात यथा इह प्रभिन्न कमलो दरे मधुनी मधुकरह पिबती इत्यत्र कश्चिदा प्राप्तो देशात यथा अयमवस्य शब्दवाच्यः इत्यत्र तम च संकेत इति मित्यर्थ बोधयन्ति शब्दस्य सक्तन्त्यंतर अंतररिता शक्तिर विधानाम हिंदी। उक्त पद लक्षण में अर्थ आया है अतः अब अर्थ के भेद दिखाते हैं। अर्थ इति अर्थ तीन प्रकार का होता है वाच्य लक्ष्य और व्यंग। इनका क्रम से लक्षण होता है। वाच्य इति जो अर्थ अविधा से बोधित हो वह वाच्य, जो लक्षण से ज्ञात हो वह लक्ष्य और जो व्यंजना से सूचित हो वह व्यंग कहता है। ये तीनों अविधा लक्षणा और व्यंजना शब्द की शक्तियां हैं। तत्र इति संकेत इति मुख्य अर्थ का बोधन करने वाली शब्द की सबसे पहली शक्ति का नाम अविधा है। यहाँ संकेत इति शब्द का अर्थ है मुख्य। संकेत ग्रह विषय भूत यह अर्थ नहीं, यह अर्थ के मानने में आत्माश्रय दोष होता है क्योंकि संकेत अविधा का ही नहीं नाम है अतः सॉरी संकेत अविधा का ही नाम है अतः अविधा ज्ञान विषय भूत अर्थ का बोधन इस कारण आत्माश्रय बोध दोष होगा। अतः शब्द का उक्त अर्थ करना चाहिए। व्याकरण कोशादि में प्रसिद्ध अर्थ मुख्य कहता है। लक्ष्य और व्यंग अर्थों के पूर्व उपस्थित होना ही इसका मुख्यत्व है। संकेत ग्रह के उपाय बतलाते हैं। उत्तम वृधेन इति किसी बड़े आदमी ने छोटे आदमी से कहा कि गौ लाओ और वह इस वाक्य को सुनकर एक गौ ले आया तो उन दोनों के पास बैठा हुआ बालक जिसे अब तक इन पदों की अर्थों का कुछ ज्ञान नहीं है पहल ही समझता है कि गौ लाओ इस समुदाय का तात्पर्य जिस जीव को ले आना ही है। अनंतर गौ बांध दो घोड़ा लाओ इत्यादि वाक्यों के सुनने पर की गई क्रियाओं को देखकर वह आवाज पोद्यात अन्वय व्यतिरेक के द्वारा गौ बांधो लाओ इत्यादि प्रत्येक पद के संकेत शक्ति को समझता है। जब वह बालक देखता है कि जहाँ गौ पद बोला गया है वहीं इस जीव यह जीव उपस्थित हुआ है अन्यत्र नहीं, तो यह समझ लेता है कि गौ पद का वाच्य यहाँ जीव है। इसी प्रकार आनय आदि क्रियाओं का लाना आदि अर्थ निर्धारित करना है। इस प्रकार व्यवहार से शक्ति ग्रह होता है। कहीं प्रसिद्ध अर्थात पहले से ज्ञात पद के साहचर्य से ही शक्ति ग्रह होता है, जैसे इह प्रभिन्नेति, यहाँ मधुकर का अर्थ सहज शक्ति देने वाली मक्खी है, सहज बनाने वाली मक्खी है, या भ्रमर यह संदेह कमल पद के साथ होने से दूर होता है। कमल के भ्रमर से ही रसपान के तात्पर्य होते हैं, यह बात कमल पद के संविधान से मालूम होती है। अतः वह प्रसिद्धार्थक पद के संविभ्यार से मधुकर पद की शक्ति ज्ञान होता है। कहीं व्याप्त अर्थात प्रमाणिक पुरुष के उपदेश से भी शक्ति ग्रह होता है, जैसे किसी बालक से उसके पिता आदि ने कहा कि यह घोड़ा है तो उसे घोड़ा पद की शक्ति उस जीव में गृहित हुई। ये उक्त उदाहरण उपलक्षण मात्र है। शक्ति ग्रह के और भी कारण होते हैं, जैसे शक्ति ग्रहम व्याकरणोप मान कोशप वाक्याद व्यवहारतश्च व्यासस्य वाक्यस्य शेषद्वितेर वदन्ति सन्निध्यतः सिद्धपस्य वृद्धा। दाक्षी पद का अर्थ दक्ष पौत्र है, यह बात व्याकरण दक्षस्यापत्यम दाक्षी अत ईय से प्रतीत होता है। गौ के सदृश गवय होता है, यह वाक्य सुनकर जंगल में गो सदृश व्यक्ति के लिए देखने के पूर्व पद वाक्य के स्मरण द्वारा यह गवय है इत्याकारक ज्ञान उपमानक से होता है। ईश्वर सर्व ईशान इत्यादि कोष से भी शक्ति ग्रह होता है। व्याप्त वाक्य सन्निधय और व्यवहार के उदाहरण पहले दिए जा चुके हैं। वाक्य शेष से शक्ति ग्रह का उदाहरण एवमस्यचरुमर्भवति, यहाँ एव शब्द आर्य जाति के व्यवहारानुसार जौ लेना चाहिए अथवा म्लेच्छ जाति के व्यवहारानुसार माल कंगनी लेनी चाहिए। इस संदेश में वसन्ते सर्वस्यानाम जायते पत्रसातनम मोदमानाश्च तिष्ठन्ति यवाह कणिशासालिनः, इस पिछले वाक्य से जौ ही लिए जाते हैं क्योंकि वसंत से ही वसंत में वे ही फलते हैं। कहीं कहीं घृविति विवृति अर्थात उस पद के अर्थ का विवरण करने से भी शक्ति ज्ञान होता है। तम चेति, इन उपायों से ज्ञात हुए सांकेतिक अर्थ का बोधन करने वाली दूसरी शक्ति से अवयव हित अर्थात शब्द की सबसे प्रथम शक्ति अभिधा कहलाती है। लक्षण आदि शक्तियों के पहले जैसे अभिधा आवश्यक है, जिस प्रकार वे अभिधा से व्यवहित है वैसे अभिधा के पूर्व कोई शब्द शक्ति अपेक्षित नहीं होती है, अभिधा की प्रथम शक्ति है। संस्कृत, संकेतो गृह्यते जातो गुण द्रव्य क्रिया सुच जाति आगो पिंडादिषु गोत्वादिका गुणो विशेषा धान हेतु शुद्धो वस्तु धर्मः शुक्लादयो हि गवादिकं यत् सजातीयभ्यः कृष्णावाग् गवादिभ्यो व्यावर्तयन्ति दव्य शब्द एकव्यक्तिवाचिनो हरिहर इत्थ वित्थादयः क्रियाः स
साध्य रूपा वस्तु धर्मा पाकादय एषु हि अधिश्रयण वस्त्रयण अन्तादि पूर्वा परिभूतो व्यापार कलापः पाक आदि सशब्दवाच्यः एष्वेव हि व्यक्तेरुपाधिषु संकेतो गृहन्ते न व्यक्तौ आनन्त्य व्यभिचार दोषापपात।
हिंदी संकेत का विषय बताते हैं। संकेत इति शब्द चार के होते हैं, शब्द चार प्रकार के होते हैं, जाति रूढ़, गूढ़ शब्द, क्रिया शब्द और यदृच्छा शब्द। जाति, गुण, क्रिया और यदृच्छा पदार्थों की उपाधियां धर्म विशेष हैं। इन्हीं में शब्दों की शक्ति संकेत का ज्ञान होता है, व्यक्ति में नहीं। यही जात्यादिक शब्दों के प्रवृत्ति निमित्त भी कहते हैं। जातिर इति गौ आदि व्यक्तियों में गोत्वादि आदि जाति होती है। गुण इति पदार्थ में विशेषता पैदा करने का कारण भूत धर्म जो पहले से सिद्ध हो उसे गुण कहते हैं। इसी बात को स्पष्ट करते हैं। शुक्लादयो हो इति शुक्लादि गुण गौ आदि को उसके सजातीय कृष्ण गौ आदि से व्यावृत करते हैं। तात्पर्य यह है कि जाति शब्द से पदार्थ का सामान्य ज्ञान होता है। जैसे किसी ने कहा कि गौ है, यहाँ गोत्र जाति से अविच्छिन्न व्यक्ति मात्र का बोध होगा, उसमें कोई विशेषता नहीं प्रतीत होगी। परंतु शुक्ल गौ कहने से शुक्ल पद कृष्णादि वर्णों की गौओं की व्यावृत्ति करता है। गोत्र जाति से युक्त एक जातीय सजातीय कृष्णा गौ आदि अब नहीं ली जा सकती, अतः शुक्लादि गुण विशेषधान के हेतु होते हैं। वे द्रव्यों की विशेषता के सूचक होते हैं और उन्हें विभिन्न गुणों वाले सजातीय से व्यावृत होते हैं। गुण क्रिया की भांति साध्य नहीं होते, किंतु वस्तु में पहले से विद्यमान होते हैं, अतः यह सिद्ध वस्तु धर्म कहते हैं। द्रव्य इति केवल एक व्यक्ति के वाचक हरि, हर डिथ, दवित्थ, देवदत्त, यज्ञ दत्त आदि शब्दों को द्रव्य शब्द या यक्षा शब्द कहते हैं। क्रिया इति वस्तु के साध्य धर्म क्रिया कहलाते हैं। एषु हिति इन साध्य रूप वस्तु धर्मों में अधिश्रयण अर्थात चावल आदि के पात्र को चूल्हे पर चढ़ाने से लेकर अवस्त्रयण अर्थात पदार्थ के नीचे उतारने पर्यंत जितने भी व्यापार करने पड़ते हैं उन सबका नाम पाक है। आग जलाना, चम्मच से चलाना, चावल निकाल कर देना, जल देना आदि सब क्रियाएं मिलकर एक पाक कहती है। तात्पर्य यह है कि एक क्रिया को ही सिद्ध करने के लिए अनेक छोटे मोटे व्यापार आगे पीछे करने पड़ते हैं। इन्हीं सबकी यथावत समाधि पर समाप्ति पर क्रिया की सिद्धि निर्भर होती है। यद्यपि ये देखने में अनेक होते हैं परंतु किसी एक की ही प्रधान क्रिया साधक होते हैं, अतः इन सबसे सिद्ध होने वाली क्रिया को साध्य रूप वस्तु धर्म कहते हैं। और जो शब्द इसे निमित्त मानकर प्रवृत्त होते हैं उन्हें क्रिया शब्द कहते हैं। जैसे वाचक, पाचक, पाठक आदि एस्व इति इन्हीं चारों उपाधियों में शब्दों का संकेत गृहित होता है। व्यक्ति में संकेत ग्रह मानने वालों के मत का निराकरण करते हैं। न व्यक्तौ इति व्यक्ति में संकेत ग्रह नहीं होता, क्योंकि ऐसा मानने से अनंत्य और व्यभिचार दोष आते हैं। तात्पर्य यह है कि जब जात्यादिक उपाधियों से शक्ति ग्रह मानते हैं तब तो समस्त व्यक्तियों में एक ही जाति रहने के कारण किसी एक स्थान पर गौ आदि शब्दों की शक्ति गृहित होने से ही काम चल जाता है। सामान्य लक्षण प्रत्याशती के द्वारा संपूर्ण व्यक्तियों का मान भान हो जाने के कारण अन्य व्यक्तियों में दोबारा शक्ति ग्रहण न होने पर भी कोई हर्ज नहीं होता। परंतु यदि व्यक्ति में शक्ति का ग्रहण माने तो प्रश्न यह होता है कि क्या संपूर्ण व्यक्तियों में एक साथ शक्ति ग्रह होता है या किसी एक व्यक्ति में ही। इनमें पहला पक्ष इसलिए ठीक नहीं कि भूत भविष्यत और वर्तमान समस्त व्यक्तियों का एक समय में किसी एक जगह एकत्रित होना ही असंभव है। यदि यह कहो कि प्रत्येक व्यक्ति में पृथक पृथक शक्ति ग्रह होता है तो अनंत शक्तियां माननी पड़ेगी, अतः अनंत दोष होगा। और यदि किसी एक ही शक्ति में एक ही व्यक्ति में शक्ति मानोगे तो उस व्यक्ति के अतिरिक्त उन अन्य व्यक्तियों की इस शब्द में उपस्थिति ही न हुआ करेगी, क्योंकि पदार्थों उपस्थिति की शक्ति ग्रह कारण होता है। यदि यह मानो कि एक शक्ति में शक्ति ग्रह को हो जाने से अन्य व्यक्तियां बिना शक्ति ज्ञान के ही उपस्थित हो जाती है तो व्यभिचार दोष होगा और पदार्थों उपस्थिति में शक्ति ग्रह की कारणता न बन सकेगी। कारण वही होता है जिसके होने पर कार्य होता हो और न होने पर न होता हो, यही अन्वय व्यतिरेक कारणता की निर्णायक है। यदि शक्ति ज्ञान के बिना भी पदार्थोपस्थिति मानोगे तो यह इस व्यभिचार के होने से शक्ति ज्ञान पदार्थों परिस्थिति का कारण नहीं हो सकता, अथवा यदि शक्ति ज्ञान के बिना भी अन्य व्यक्तियों की उपस्थिति मानोगे तो जिस प्रकार गो शब्द शक्ति ग्रह के बिना अन्य गो व्यक्तियों का उपासक है, इसी प्रकार अश्वादि का भी उपस्थापक हो जाएगा, क्योंकि अग्रहित शक्तित्व दोनों में समान है। इस प्रकार गो शब्द से अश्वादि का ही का भी भान प्रसक्त होने से व्यभिचार दोष आएगा। मुख्यार्थवादे तद्युक्तो यथा ययान्ययो अर्थ प्रतीयते रूढे प्रयोजनाद्यासौ लक्षणा सत् किरंपिता शक्तिरर्पिता कलंगी साहसिकः इत्यादौ कलिंगा आदि शब्दो देश विशेष अधिरूपे स्वार्थे असंभवन्याय शब्द शक्त्या स्वसंयुक्तान पुरुषादीन प्रत्ययायति यथा च गंगायाम घोषः इत्यादौ गंगादि शब्दो जलमयादि रूपार्थवाचकत्वात् प्रतीते असंभवस्य वस्य सामिप्य आदि संबंधिनः ततादिः बोधयति सा शब्दस्यर्पिता स्वभाव विकेतरा ईश्वरानुभविता वा शक्तिर्लक्षणा नाम पूर्वर्त हेतु रूढि प्रसिद्धिरेव उत्तर गंगा तटे घोषः इति प्रतिपादनलभ्यश्च शीतत्वपावनत्वयि सस्यस्य बोधनरूपं प्रयोजनं हेतुं विनापि यस्य कस्यश्चिन्तस्संबंधिनो लक्षणो अति प्रसंगस्यात् इत्युक्तं रूढे प्रयोजनाद्दासौ इति केचित् कर्मणि कुशलः इति रूढावुदहारयन्ति हारन्ति तेषामयभिप्रायः कुशलान्तिति व्युत्पत्तिलभ्यः कोशाग्रहीरूपो मुख्योऽर्थ प्रकृते संभवन्वेचकत्वादिसाध्यतरसाम्यर्थसम्बन्धसम्बन्धिनः दक्षरूपमर्थबोध्यति तदन्ते नमन्यते कुशाग्रग्राह्यरूपार्थस्य व्युत्पत्तिर्लभ्यत्वे अपि दक्षरूपस्यैव मुखार्थत्वादनन्द्यैः शब्दानां व्युत्पत्तिनिमित्तम् अनन्यश्च प्रवृत्तिनिमित्तम् व्युत्पत्ति लभ्यस्य मूर्त्वात् अर्थत्वे गौः सेते इत्यत्रापि लक्षणा स्यात् गर्मिणोः उडादि दुबै छाछट संख्या इति गमधातो अंगो प्रत्ययेन व्युत् पादितस्य गोशब्दस्य सयन काले प्रयोगात् हिंदी इसके अतिरिक्त व्यक्ति में सब शब्दों की शक्ति मानने से उक्त चार प्रकार के शब्दों का विषय भी विभक्त नहीं हो सकेगा। जब उपाधियों में शक्ति मानते हैं तब तो उपाधियों के भिन्न होने से एक ही व्यक्ति में गौ सकुलयुह दितः। इस प्रकार चारों प्रकार के शब्दों का प्रयोग हो जाता है, किंतु व्यक्ति शक्तिवाद में व्यक्ति की अभिन्नता के कारण पुनरुक्त दोष होता है। जैसे ही एक मुख तेल तलवार और दर्पण में कुछ भिन्न सा प्रतीत होता है, इसी प्रकार शंख दूध बर्फ आदि में कुशलादि गुण और गुड़ चावल आम आदि में पाक आदि क्रियाएं एक होने पर भी आश्रय भेद के कारण भिन्न की प्रतीति होती है। वस्तुतः वे एक ही हैं, अतः शक्ति ग्रह में कोई बाधा नहीं होती। कोई लोग शुक्लत्वादि जाति में ही शक्ति मानते हैं। इस मत में शुक्लादि गुणों में और पाक आदि क्रियाओं में वास्तविक भेद माना जाता है। लक्षणा शक्ति का निरूपण करते हैं। मुख अर्थे इति उक्त अभिधा शक्ति के द्वारा जिसका बोधन किया जाए वह मुख्यार्थ कहलाता है। इसका बाद होने पर अर्थात वाक्य में मुख्यार्थ का अन्वय अनुपन्न होने पर रूढ़ी प्रसिद्धि के कारण अथवा किसी विशेष प्रयोजन का सूचन करने के लिए मुख्यार्थ से संबंध अन्य अर्थ का ज्ञान जिस शक्ति द्वारा है उसे लक्षणा कहते हैं। यह लक्षण अर्पित शक्ति अर्थात यह शक्ति अर्पित अर्थात कल्पित या अमुख्य है। अविधा की भांति ईश्वर से उद्भावित नहीं है। नवीन लोग बाध का अर्थ तात्पर्यानुपति करते हैं। वे अन्वयानुपत्ति को लक्षणा का कारण नहीं मानते। यदि अन्वयानुपत्ति को लक्षणा का कारण माना जाएगा तो काकेभ्यो दधि रक्षत्याम इत्यादि वाक्यों में लक्षणा न हो सकेगी, क्योंकि यहाँ काक शब्द के अन्वय में कोई अनुपत्ति नहीं होती। यद्यपि प्रयोजन लक्षण के अनंतर व्यंजना से ज्ञात होता है। गंगायाम घोषः इत्यादि स्थल में शैल पावन त्वादि के अतिशय रूप प्रयोजन का लक्षण के पूर्व ज्ञान हो जाना संभव नहीं, क्योंकि वह लक्षणा का फल और फल कारण के पीछे होता है। अतः प्रयोजन ज्ञान को रूढ़ी की तरह लक्षणा का कारण नहीं मान सकते। तथापि अवाचक पद का प्रयोग किसी विशेष प्रयोजन के लिए किया जाता है। इस सामान्य रूप के से प्रयोजन ज्ञान पहले रहता है, वही लक्षणा का कारण होता है और सत्या अतिशय आदि विशेष रूप से उनका ज्ञान लक्षण के अनंतर ही होता है। यह श्री तर्क वागेश जी का मत है। मुख्यार्थ से असंबद्ध अर्थ की भी उपस्थिति यदि लक्षणा के द्वारा मानी जाए तो गंगा शब्द से यमुना का तट भी उपस्थित होने लगे। अतएव मुख्यार्थ के साथ लक्षार्थ के संबंध का भी लक्षण का कारण माना जाता है। इस कारिका में अन्य शब्द मुख्यार्थ से अन्य का बोधक नहीं है। ऐसा मानने से उपादान लक्षण में यह सामान्य लक्षण व्याप्त हो रहेगा, क्योंकि यहाँ लक्षणार्थ के साथ मुख्यार्थ भी लगा रहता है। इस कारण यहाँ अन्य शब्द का अर्छ मुख्यार्थतावच्छेद अतिरिक्त धर्मावच्छिन्न काकेभ्योदधिरक्षताम् इत्यादि उपादान लक्षण के मुख्यार्थ तावक छेदक के काकत्व उससे अन्य धर्म है। दध्युपघातकत्व तवदच्छिन्न में काक शब्द की लक्षणा है एवं रामो अस्मि सर्वहे सहे इस उदाहरण में मुख्यार्थ तावक छेदक रामत्व है। तदतिरिक्त धर्म है दुख सहिष्णुत्व तदवक्षिण में राम शब्द की लक्षणा है। इस कारिका में लक्षणा के कारण चार कारण बतलाए हैं। मुख्य अर्थ का बोध और उसके साथ लक्षार्थ का संबंध एवं रूढ़ी और प्रयोजन, इनमें से पहले दो तो सर्वत्र आवश्यक हैं और पिछले दो में से किसी एक रूढ़ी का प्रयोजन होना आवश्यक है। इसी बात को सूचित करने के लिए कारिका में वा शब्द के द्वारा इनका पृथक निर्देश किया है। रूढ़ी और प्रयोजन मूलक उदाहरणों में उक्त लक्षण का समन्वय करते हैं। कलिंग इति कलिंग साहसी है इत्यादि वाक्यों में देशादि के वाचक कलिंगादि शब्द अपने मुख्य अर्थ के द्वारा अन्वय में अनुत्पन्न होकर जिस शक्ति शब्द शक्ति से अपने अर्थ देश विशेष के साथ संयुक्त पुरुषादि की प्रतीति कराते हैं अथवा गंगा पर कुटी हैं इत्यादि वाक्यों में प्रवाह आदि के वाचक गंगादि शब्द अन्वय में अनुत्पन्न होकर समीप्यादि संबंध से अपने अर्थ के संबंधित तटादि का जिस शक्ति के द्वारा बोधन करते हैं वही अर्पित अर्थात अस्वाभाविक अथवा ईश्वरानुभावित शब्द शक्ति लक्षणा कहलाती है। तात्पर्य यह है कि कलिंग साहसिक इस वाक्य में कलिंग शब्द का अर्थ है देश विशेष और साहसिक का अर्थ है साहसी, परंतु साहस जड़ पदार्थों में नहीं रहा करता, अतः देश के वाचक कलिंग शब्द का साहसिक के साथ अभेद संबंध होना असंभव है। अतः यह शब्द अन्वय में अपने मुख्यार्थ के बाधित होने के कारण संयोग संबंध से उस देश के संबंधी पुरुष का लक्षणा से बोधन करता है। इसी प्रकार गंगा या गंगायाम घोषः, इस वाक्य में गंगा पद का मुख्य अर्थ है प्रवाह विशेष, उसके ऊपर कुटी का होना असंभव है, अतः गंगा शब्द मुख्यार्थ का अन्वय बाधित होने के कारण समीप्य संबंध के से अपने संबंधी तट का लक्षण से बोधन करता है। कारिका में के अर्पिता शब्द का अर्थ करते हैं स्वामविकेतरा अथवा ईश्वरानुद्भावित, कोई लोग अविधा को स्वाभाविक शक्ति मानते हैं, उनके मतानुसार लक्षणों का स्वाभाविक के तर कहा जाता है, और जो लोग अविधा को ईश्वरोद्भावित ईश्वरचित मानते हैं उनके मतानुसार लक्षण को ईश्वरानुभावित कहा है। तात्पर्य यह है कि लक्षणा शक्ति कृत्रिम है, यह मनुष्य कल्पित है, अविधा की भक्ति सिद्ध नहीं है। वस्तुतः अर्पित शब्द के इन दोनों अर्थों से कोई अपूर्व बात बाधित नहीं होती। इस दशा में यदि यह विशेषण कारिका से में से निकाल दिया जाए तो भी कोई हानि न होगी, अतः यह व्यर्थ है जिसका कोई, क्योंकि इसका व्यावर्त कुछ नहीं है। इसके अतिरिक्त व्यंजनावृत्ति भी स्वाभाविक केतर है और ईश्वरानुद्भावित होती है, उसमें भी यह अति व्याप्त होगा। प्राचीन आचार्यों ने लक्षण को आरोपित क्रिया किया है कहा है। व्याख्याकारों ने इस सांतरा अर्थनिष्ठ और व्यवहित लक्ष्य अर्थ विषय बताता है। वस्तुतः लक्षण अर्थनिष्ठ ही होती है, शब्दनिष्ठ नहीं, शब्द में उसका आरोप करना पड़ता है। गंगा या घोषः इत्यादि उदाहरणों में अन्वय की उत्पत्ति अर्थ में ही होती है, शब्द में नहीं। गंगा शब्द के मुख्य अर्थ प्रवाह में ही घोष की अधिकरणता अनुत्पन्न होती है। समीप्य आदि संबंध भी अर्थ में ही देखे जाते हैं, तट के साथ समीप्य संबंध प्रवाह का भी होता है, गंगा शब्द का नहीं। प्रवाह रूप मुख्य अर्थ ही समीप्य संबंध के द्वारा तट रूप अर्थ को उपस्थित करता है, इसी से इसे सांतरा अर्थनिष्ठ मुख्य अर्थ का धर्म है सांतरा अर्थनिष्ठ अथवा व्यवहारित लक्ष्य अर्थ विषय कहा जाता है। लक्ष्य अर्थ मुख्य अर्थ से व्यवहित होता है रहता है, यद्यपि लक्षण मुख्य अर्थ ही अपने संबंधी व्यवहित अर्थ को उपस्थित करता है, अतः उसी में असत्यार्थ प्रतिपादकत्व रहता है। इसी आरोप के कारण लक्षणा को प्राचीन आचार्यों ने आरोपित किया क्रिया कहा है। अर्पित शब्द का भी यही अर्थ होना चाहिए, स्वाभाविकेतर अर्थ आदि नहीं। लक्षणा को यदि शब्द में आरोपित न किया जाए तो अर्थ लक्ष्य अर्थ का शब्द बोध में नहीं हो सकेगा, क्योंकि जो अर्थ शब्द के द्वारा उपस्थित नहीं होता उसका शब्द बोध में ज्ञान नहीं हुआ करता, इसी लक्षणा का हेतु है। सॉरी इसी कारण लक्षणा को शब्द व्यापार मानना आवश्यक है। पूर्व इति इन उदाहरणों में से पहले में रूढ़ी प्रसिद्धि लक्षणा का हेतु है। कालिंग आदि शब्द तत्त देश वासियों में प्रसिद्ध है। उत्तर इति दूसरे उदाहरण में लक्षणा का हेतु प्रयोजन है। गंगा के किनारे कुटी है, इस वाक्य से जो शीतता और पवित्रता का अतिशय बोधित नहीं होता, क्योंकि किनारा बहुत दूर तक माना जाता है। यह बात गंगा पर कुटी है, इस वाक्य में लक्षणा के अनंतर व्यंजना से प्रतीत होती है, यही अतिशय बोधन यहाँ लक्षण का प्रयोजन है। हेतुम विनेति, हेतु के बिना यदि चाहे जिस संबंधी का लक्षण अर्थात लक्षणा शक्ति के बोधन करने लगे तो अनेक स्थलों में अतिव्याप्ति होगी। अतः रूढ़े प्रयोजनाद्यासौ इस अंश में कारिका में हेतु का निर्दिष्ट निर्देश किया है। लक्षणा के लिए रूढ़ी या प्रयोजन हेतु का होना आवश्यक है। काव्य प्रकाश ने जो रूढ़ी का उदाहरण दिया है उसका निराकरण करते हैं। केच इति, कोई लोग कर्मणि कुशलः इसे रूढ़ का शब्द उदाहरण बताते हैं। उनका यह अभिप्राय है कि कुशल पद की व्युत्पत्ति करने से इसका अर्थ होता है कुशों को ग्रहण करने वाला। कुशान चलति इति कुशलः, यह इसकी व्युत्पत्ति है। किंतु उक्त उदाहरण में इस व्युत्पत्ति से लभ्य कुशाग्रहक रूप अर्थ का संबंध होना असंभव है। अतः यह पद विवेचक त्वादिसाधर्म्य संबंध से अपने संबंधी चतुरूप अर्थ का लक्षणा द्वारा बोधन करता है। इस मत का खंडन करते हैं तदन्य इति इस वाक्य को और लोग नहीं मानते, क्योंकि कुशल पद की व्युत्पत्ति से यद्यपि कुशाग्राहक रूप अर्थ प्राप्त होता है तथापि उसका मुख्यार्थ चतुर रूप अर्थ ही है। कुश ग्राहक नहीं, शब्दों की व्युत्पत्ति का निमित्त अन्य होता है और प्रवृत्ति का निमित्त अन्य। यह आवश्यक नहीं है कि जो व्युत्पत्ति का निमित्त है वही प्रवृत्ति का भी निमित्त हो। व्युत्पत्ति लब्ध अर्थ में जो प्रकाश तया भाषित होता है वह व्युत्पत्ति निमित्त कहता है। जैसे कुशल शब्द में कुशल ग्राहित्व और शक्ति ज्ञान में जो प्रकाश प्रकार तया भाषित होता है वह प्रवृत्ति निमित्त कहता है। जैसे गो शब्द में गोत्व यदि व्युत्पत्ति लभ्य अर्थ को ही मुख्यार्थ माने तो गौ सोती है। इस वाक्य में भी लक्षणा माननी पड़ेगी, क्योंकि गमनार्थक गम धातु से गमेंडोह इस औणादिक सूत्र के द्वारा तो डी प्रत्यय करने पर बने हुए गो शब्द का सायंकाल में प्रयोग अनुपम है, सायंकाल में गमन तो नहीं। फिर उस समय गौ वह गौ गमन कर्त्री कैसे होगी। अतः व्युत्पत्ति निमित्त हो को ही प्रवृत्ति निमित्त मानना ठीक नहीं। एवच कर्मणि कुशलः इस उदाहरण में भी कुशाग्र रूप अर्थ को मुख्यता नहीं है। संस्कृत मुख्यार्थ अस्तेतर आक्षेपो वाक्यर्थ अन्वय सिद्धये स्यादात्मनो अप्यो पादानादेशो पादानलक्षण रूढ़ा उपादानलक्षण यथा श्वेतो धावति प्रयोजने यथा कुंताः प्रविशन्ति अन्यो हि श्वेताद्भिः दिभिः कुन्तादिभिश्चाच चेतनयः केवलैर्धावन प्रवेशन क्रिययोः कर्तृत्वयान्वय यमलभमानैरैतसिद्धे आत्मसंबंधिनो अश्वादयः पुरुषादयश्च अक्षिप्यन्ते पूर्वत्र प्रयोजनाद्भावाद् रूढिः उत्तरत्र तु कुन्तादिना मतिगहन् स्वप्नत्वं प्रयोजनम् अत्र च मुख्यार्थयिष्यामत्मानु अप्युपादानं लक्षणालक्षणायां तु परस्यैव उपलक्षणमित्यनयोर्भेदः यमेवाज्यहत्वा स्वार्थे इत्युच्यते अर्पणं स्वस्य वाक्यार्थे परस्यान्वसिद्धये उपलक्षणाहेतुत्वादेशालक्षणालक्षण रूढिप्रयोजनयोरलक्षणालक्षण यथा कलिङ्गसाहसिकः गङ्गायां घोषः इति च अन्यो हि पुरुषतटयोर्वाक्यार्थे अन्वयसिद्धये कलिङ्गस गङ्गाशब्दावात्मान् अमर्पयत् उपकृतं बहु तत्र किम् उच्यते सृजनता प्रथिता भवता परं विदधति दृश्यमेव सदा सखे सुखीत् माश्वतस्ततः शरदां सतम् अत्रापकारादीनां वाक्यार्थे अन्वयसिद्धये उपकृतादयः शब्दात्मन अर्पयन्ति अपकारिणं प्रत्युपकारादि प्रतिपादनाम् अन्मुख्यार्थबाधो वैपरीत्यलक्षणः सम्बन्धः फलम् अपकारातिशय इयमेव जहत्स्वार्थे इत्युच्यते हिंदी लक्षण के भेद दिखाते हैं मुख्यार्थस एति वाक्य में अंग रूप से अपने अन्वय की सिद्धि के लिए जहाँ मुख्य अर्थ अन्य अर्थ का आक्षेप कराता है वहाँ आत्मा अर्थात मुख्यार्थ में भी बने रहने से उस लक्षणा का उपादान लक्षणा कहते हैं। यहाँ भी पूर्ववर्त अनेक के अर्थ मुख्यार्थ मुख्यार्थतावच्छेदकातिरिक्तर्मावचित है। इस कारिका में श्री तर्क वागीश जी ने अन्वय सिद्धि का अर्थ एरस्याप्यन्वय सिद्ध लिखा है। यह ठीक नहीं क्योंकि अपनी अन्वय सिद्ध के लिए अन्य ही नहीं अन्य के आक्षेप का नाम ही उपादान है। यही श्री मम्मटाचार्य ने लिखा है स्वसिद्धये पराक्षेपः उपादानम् प्रकृत उदाहरण में भी जो कुंती की अन्वय सिद्धि के लिए पुरुष का आक्षेप किया गया है पुरुष का अन्वय सिद्ध करने के लिए कोई यत्न नहीं किया गया है। पुरुष का अन्वय तो स्वयं सिद्ध है बाधित तो है ही नहीं फिर उसके लिए यत्न की क्या आवश्यकता है। जैसे प्रवेश क्रिया में कुंत का अन्वय बाधित होकर लक्षणार्थ का उपस्थापक होता है इसी प्रकार यदि पुरुष का भी अन्वय बाधित होता है तो उसके अन्वय की सिद्धि की चिंता होती है। इसके अतिरिक्त लक्षणार्थ लक्षण होता भी नहीं। जिस प्रकार कुंतों का अन्वय के लिए कुंताधारी पुरुष लक्षित हुए हैं इसी प्रकार इन पुरुषों के लिए यदि कुछ और असिप्त या लक्षित होता तो अन्य रस्या अन्वय सिद्धये कहना कुछ ठीक भी होता है। पहले कह चुके हैं कि रूढ़ी और प्रयोजन लक्षण के हेतु होते हैं उसी क्रम से उदाहरण देते हैं। रूढ़ी में उपादान लक्षण जैसे श्वेतो धावती घोड़दौड़ या किसी अन्य अवसर में किसी ने पूछा कि कौन सा घोड़ा दौड़ रहा है इसके उत्तर में किसी ने कहा सफेद दौड़ रहा है। प्रयोजन में उपादान लक्षण जैसे कुंताह प्रविशन्ति भाले प्रवेश कर रहे हैं अनयोर इति इन उदाहरणों में श्वेत वर्ण और कुंत भाले जड़ होने के कारण दौड़ने और प्रवेश करने में इन क्रियाओं में कर्ता होकर अन्वित नहीं हो सकते। अतः वाक्यार्थ में अपने अन्वय की सिद्धि के लिए श्वेत शब्द श्वेत रंग वाले आस्वाद का और कुंत शब्द कुंत धारण करने वाले पुरुषों का आक्षेप कराता है। पूर्वत्र इति पहले उदाहरण श्वेत में लक्षण का कुछ प्रयोजन नहीं रूढ़ी ही उसका निमित्त है दूसरे में कुंतों की अति गहनता व्यजित करना प्रयोजन है। व्याकरण लोग गुणवाचक श्वेत आदि शब्दों में मतुप प्रत्यय करके उसका लुक करते हैं। रसादिक क्यश्च इस पाणिनि सूत्र में पाणिनि सूत्र से मतुप प्रत्यय होता है और गुणवचनेभ्यो मातु पो लुगिष्ट इस वार्तिक से उसका लुक होता है। इस प्रकार श्वेत का वाच्य अर्थ ही श्वेत गुणवान होता है। जहाँ मतुप प्रत्यय और उसका लुक नहीं होता वहाँ यह शब्द केवल श्वेत गुण का वाचक रहता है। इससे यह स्पष्ट है कि श्वेत गुण और श्वेत गुणवान दोनों ही श्वेत शब्द के वाच्य अर्थ होते हैं। इसी अभिप्राय से अमर कोषाकार ने इस शब्दों के को गुण और गुणी इन दोनों का वाचक बताया है। गुणे शुक्ला दयः पुंसी गुणी लिंगा स्तुतद्धति। परंतु नैयायिक लोग मतुप और उसके लुक के स्वीकार नहीं करते, अतः श्वेतो धावती इत्यादि स्थलों में उन्हें लक्षणा माननी पड़ती है। इसी मत के अनुसार मूलोक्त उदाहरण जानना अत्र इति। इस उपादान लक्षण में मुख्यार्थ के अपने स्वरूप का भी लक्ष्यार्थ के साथ उपादान होता है। यही इन दोनों का भेद है। इसी लक्षणा को अजहत स्वार्थ वृत्ति भी कहते हैं, क्योंकि इसमें स्वार्थ मुख्यार्थ का परित्याग होगा नहीं होता है। लक्षण लक्षणा का लक्षण कहते हैं। अर्पणम इति वाक्यार्थ के मुख्यार्थ से भिन्न अर्थ से अन्वय बोध के लिए कोई शब्द अपने स्वरूप का समर्पण कर दे, अर्थात मुख्य अर्थ को छोड़कर लभ अर्थ का उपलक्षण मात्र का वाक्य से अन्वय उपलक्षण मात्र बन जाए, वह लक्षणा को लक्षण मात्र कहते हैं, क्योंकि यह उपलक्षण का भी हेतु ही होती है। इसमें मुख्यार्थ का वाक्य में अन्वय नहीं होता। इसकी रूढ़ी और प्रयोजन से कर्म से
उदाहरण होते हैं
कलिंग इत्यादि। इन उदाहरणों में क्रम से पुरुष और तट के अन्वय को सिद्ध करने के लिए कलिंग और शब्द गंगा शब्द अपने स्वरूप का समर्पण करते हैं, अर्थात वाक्यार्थ में पुरुष और तट का बोध कराने के लिए अपने स्वरूप को उपयोगी बनाते हैं। अथवा आत्मानं मुख्यार्थम अर्पयतः परित्यज्यतः, ये दोनों पद अपने मुख्यार्थ का परित्याग करते हैं। अन्य उदाहरण देते हैं। उपकृतम इति अनेक उपकार करके भी अपने को उपकारी बताने वाले किसी कुटिल पुरुष के प्रति किसी हृदय की मार्मिक उक्ति है, अर्थ आपने बहुत उपकार किया है, उसके क्या कहने हैं, आपके अत्यंत सज्जनता का विस्तार किया है, हे मित्र आप इसी प्रकार कार्य करते रहें और करते हुए 100 वर्ष तक जीते रहिए। अत्र इति यहाँ वाक्यार्थ में आकारादिकों का अन्वय सिद्ध करने के लिए उपकृत सुजनता आदि शब्द अपने स्वरूप का समर्पण करते हैं। उपकारी के प्रति उपकारादि के कथन से मुख्यार्थ का बोध है और मुख्यार्थ के साथ लक्ष्यार्थ का वैपरीत्यरूप संबंध है, एवं उपकार की अधिकता का बोधन करना एवं लक्षण का प्रयोजन है। इसी लक्षण लक्षण को जहत्यवार्थ वृत्ति भी कहते हैं। लक्षणा के और भेद दिखाते हैं। संस्कृत आरोपाध्यवसानाभ्याम प्रत्येकम तायपि द्विधा। आरोपे इति आरोप और अध्यवसान के कारण पूर्वोक्त चारों प्रकार के लक्षणाओं के फिर दो भेद होते हैं। संस्कृत ताह पूर्वोक्ताश्च चतुर्भेद लक्षणाः विषयस्यारनिर्गुण अस्यान्य तदात्म परिकृति सारूपास्यानिग्रहणस्य मतासाध्यवसानिका। आरोप और अध्यवसान के स्वरूप का निर्देश करते हुए सारूपा और साध्यवसान लक्षणा का स्वरूप दिखाते हैं। विषयस्येति अनाच्छादित स्वरूप विषय उपमेय का अन्य उपमान के साथ अभेद ज्ञान कराने वाली लक्षण को सरूपा कहते हैं और निगिर्ण स्वरूप आच्छादित विषय का विषयी के साथ अभेद ज्ञान करने वाली लक्षणा को साध्यवसान कहते हैं। संस्कृत विषयिणा अग्निगिरणस्य विषयस्य तेनैव सह तादात्म्य प्रतिकृतस्य सारूपा यमेव रूपलंकारस्य बीजम् रूढ़ा उपादान लक्षणा सारूपा यथा अश्वः श्वेतो धावति अत्र हि श्वेत गुणावन स्वरो अनिगिरण स्वरूपः स्वसमवेत गुणादात्मनेन प्रतीयते प्रयोजने यथा येते कुन्ताः प्रविशन्ति अत्र सर्वनामना कुन्ता धारी पुरुष निर्देशात् सा आरोपत्वं रूढौ लक्षणा लक्षणा सारूपा यथा कलिंगः पुरुषो युध्यते अत्र पुरुष कलिंगयो अराधारा अधेय भावः संबंधः प्रयोजने यथा आयुधृतम् अत्रायुष्कारणम् अपि घृतम् कार्यकारणाभावसम्बन्ध्यायुत्तादात्म्येन प्रतीयते अन्यवैलक्षणेन नाप्यभिचारेण युष्वकरत्वम् प्रयोजनम् यथा वा राजकीयपुरुषे गच्छति राजा असौ गच्छति इति अत्र स्वस्वाभिमिभावलक्षणः सम्बन्धः यथा वा अग्नमात्रे अवयौ अभागे हस्तो वयम् अत्र अवयावव अवयै विभावलक्षणः सम्बन्धः ब्राह्मणोऽपि तक्षासौ अत्र तात्कर्म्यलक्षणः इन्द्रार्थासु स्थूणासु आमी इन्द्राः अत्र तदर्थलक्षणः सम्बन्धः एवमन्यत्रापि निगिरणस्य पुनः विषय अस्यान्यतादात्म्य प्रतीतिकृत्साध्यवसानाम् अस्याश्चतुर्षु वेदेषु पूर्वोदाहरणम् अन्येव। हिंदी अग्निगिरण स्वरूपस्य पदार्थस्य अन्यतादात्म्य प्रतीति अरूपाः। वाक्य में जिस पदार्थ के स्वरूप का स्पष्टतया निर्देश किया गया है जिसका स्वरूप अप्रधान अपकृत उपमान भूत चंद्रादि विषय से निगृण अर्थात छिपा हुआ नहीं है उसी प्रकृत वर्ण्यमान उपमेय मुखादि की अंत अर्थात अपकृत अप्रकृत चंद्रादि विषय के साथ तादात्म्य प्रतीति अभेद ज्ञान को आरोप कहते हैं। जैसे सिंहो माणवकः यहाँ बालक का स्वशब्द माणवकः से निर्देश करके उसका सिंह के साथ अभेद दिखलाया गया है अतः यहाँ बालक में सिंहत्व का आरोप है यही सारूपा लक्षणा रूपक अलंकार का बीज है। विषयिनिगरणेन विसत्थिर्णो अभेद प्रति अध्यवसानयम् विषय का निगरण करके उसके साथ विषय का अभेद प्रतिपादन करना अध्यवसान कहता है। जैसे सिंह यहाँ बालक का वाक्य में पृथक निर्देश नहीं है और सिंह के साथ उसका अभेद प्रतिपादन किया गया है यह साध्यवसाना लक्षणा अतिशयोक्ति अलंकार का बीज है। रूढ़ी में सारूपा उपादान लक्षणा का उदाहरण है। अश्चैति यहाँ अश्व अग्निगिरण स्वरूप है क्योंकि उसका पृथक निर्देश किया गया है। और अपने में समवित समवाय संबंध से विद्यमान जो गुण श्वेत वर्ण उसके साथ उसका अश्व का अभेद प्रतीत होता है। यहाँ श्वेत शब्द की श्वेत गुण विशिष्ट में प्रसिद्ध होने के कारण रूढ़ी है। श्वेत गुण अपने स्वरूप को ही लक्ष्यार्थ के साथ बोधित करता है, अतः यह उपादान लक्षणा है और अग्निगण स्वरूप अश्व के साथ श्वेत का तादात्म्य प्रतीत होता है, अतः आरोप है। इस प्रकार यह रूढ़ी के में सरोपा उपादान लक्षण हुई है। इसी का प्रयोजन में उदाहरण देते हुए एते कुंता इति अत्र इति, यहाँ एतत् सर्वनाम में से कुंताधारी पुरुषों का निर्देश किया है और कुंतों के साथ उनकी अभेद प्रतीति होती है, अतः यहाँ आरोप है और लक्ष्यार्थ के साथ कुंतों की भी प्रतीति होती है, अतः उपादान है। एवं कुंतों का अग्नि अति गहनत्व सूचन प्राप्त करना प्रयोजन है, अतः यह प्रयोजनवती सारोपा उपादान लक्षणा है। रूढ़ी में सारोपा लक्षणा का उदाहरण है कलिंग इति, यहाँ कलिंग शब्द कलिंग देशवासी का उपलक्षण है, अतः यह लक्षण लक्षणा है। पृथक निर्दिष्ट पुरुष के साथ अभेद प्रतीति होने के से सरोपा है और प्रयोजना भाव तथा प्रसिद्धि के कारण रूढ़ी है। अत्र इति पुरुष और कलिंग देश का आधाराध्येय भाव संबंध यहाँ लक्षण का प्रयोजक है। प्रयोजन में सारूपा लक्षण का उदाहरण देते हैं आयु घृतम, यद्यपि धृत घृत आयु का कारण है, आयु नहीं तथापि कार्य कारण भाव संबंध से आयु का संबंधी घृत यहाँ आयु के साथ अभिन्न प्रतीत होता है, अतः यह लक्षण लक्षण है। एवं अन्य वस्तुओं की अपेक्षा घृत विलक्षण रीति से आयु पैदा करता है और अव्यभिचारी से आयुष्य का कारण है, अर्थात अवश्य ही आयु का हितकर है। यह बात द्योतन करना है यह बात द्योतन करना इस लक्षण का प्रयोजन है, अतः यह प्रयोजनवती है। शक्यार्थ के साथ अनेक प्रकार के संबंध लक्षण के प्रयोजक होते हैं, यह दिखलाने के लिए अनेक प्रकार के उदाहरण देते हैं। यथा वेति राज संबंधी किसी बड़े आदमी के गमन समय में भी राज असौ गच्छति यह प्रयोग होता है, यह भी सारूपा प्रयोजनवती लक्षण लक्षणा है। असौ पद से विषय का पृथक निर्देश किया है और राजा के साथ है उसका अभेद प्रतीत होता है, अतः सारूपा राज शब्द राज संबंधी का उपलक्षण है और उस पुरुष की संपत्ति आदि की अधिकता द्योतन करना इस लक्षण का प्रयोजन है। अत्र स्वस्वामी इति यहाँ स्वस्वामी भाव संबंध लक्षण का प्रयोजक है। अन्य उदाहरण देते हैं अग्र इति, हाथ के केवल अग्र भाग को हस्तो अयम कहा जाता है, यह रूढ़ी में सारूपा लक्षण लक्षण का उदाहरण है। यहाँ अवयव अवयवी भाव संबंध है, अयम पद से निर्दिष्ट अग्र भाग का हाथ के साथ अभेदारूप है और हस्त शब्द उपलक्षण है एवं इस लक्षण का कारण प्रसिद्धि ही है, प्रयोजन कुछ नहीं। अन्य संबंध का उदाहरण ब्राह्मणों अप इति, बढ़ई का काम करने वाला ब्राह्मण को भी तक्षा असौ कहा जाता है, यह प्रयोजनवती सारूपा लक्षण लक्षण का उदाहरण है। बढ़ई के सब कामों में प्रवीणता सूचित करना इसका प्रयोजन है। यहाँ तारतम्य संबंध है क्योंकि ब्राह्मण बढ़ई का काम करता है। अन्य उदाहरण इंद्र इति, यज्ञ में इंद्र के लिए गाड़ी गई वस्तु स्थूनाओ खम्भों को अभी इंद्राह कहा जाता है, यह प्रयोजनवती सारूपा लक्षण लक्षण का उदाहरण है। यहाँ इंद्र के समान पुण्यत्व द्योतन करना प्रयोजन है और तादर्थ संबंध है, इसी प्रकार अन्य उदाहरण भी जानना चाहिए। उक्त सब सारूपा लक्षण का उदाहरण दिए हैं। अब अध्यवसाध्य वसाना के विषय में कहते हैं, निगृण अस्येति निगृण, पूर्वोक्त विषय का अन्य विषय के साथ अभेद करना करने वाले लक्षण साध्य वसाना कहती है। इसके इन चार भेदों के उदाहरण पूर्वोक्त ही जानना चाहिए। यथा रूढ़ी में साध्य वसाना उपादान लक्षण का उदाहरण है, श्वेतो धावती और प्रयोजन में कुंता प्रविशन्ति, एवं साध्य वसाना लक्षण लक्षण का रूढ़ी में कलिंग साहसिक और प्रयोजन में गंगायाम घोष, यह उदाहरण है। इनका वर्णन पहले हो चुका है। किसी का मत है कि अश्वेतो धावती इस उदाहरण में उपादान लक्षण मानना ठीक नहीं, क्योंकि यहाँ उपादान नहीं है। जैसे कुंता प्रविशन्ति में लक्षण करने पर कुंतों का भी प्रवेश क्रिया में अन्वय गुण होता है, वैसे इस उदाहरण में नहीं होता, क्योंकि श्वेत गुण है और गुणों में क्रिया नहीं रहती। गुणयाद निर्गुण क्रिया, अतः साधन क्रिया में श्वेत का अन्वय नहीं हो सकता, इसलिए गुण लक्षण मानना नहीं चाहिए, सॉरी गुण लक्षण मानना चाहिए, और उपादान लक्षण का उदाहरण श्वेत शोभते हो सकता है। शोभा गुणों में भी रहती है, गमनादि क्रिया ही गुणों में नहीं रहती। संस्कृत सादृश्यते रसंबंधा शोधात्मा सकलायपि सादृश्यया तु मता गौड्यस्तेन षोडश भेदिता ताह पूर्वोक्तायष्ट भेदाः लक्षणाः सादृश्येते संबंधाः कार्यकारण भवादयः अत्र शुद्धानाम पूर्वोदाहरणन्नैव रूढाव उपादान लक्षणा सारूपा गौणी यथा एतानि तैलानि हेमन्ते सुखानि अत्र तैल शब्दस्यति लब्भवस्नेहरूपं मुख्यार्थं उपादायैव सर्पपाय दिशु स्नेहेषु वर्तते प्रयोजने यथा राजकुमारेषु तत्सदृशेषु च गच्छस्तु एते राजकुमारा गच्छन्ति रूढा उपादान लक्षणा साध्यवसाना गौड़ी यथा तैलानि हेमन्ते सुखानि प्रयोजन्ते यथा राजकुमारा गच्छन्ति रूढौ लक्षण लक्षणा सारूपा गौड़ी यथा राजा गौणेन्द्रकण्टकं शोधयति प्रयोजने यथा गौरवाहिकः रूढौ लक्षणा लक्षणः साध्यवसानाः गौरी यथा राजा कण्टकं शोधयति प्रयोजने यथा गौर्यल्पति अत्र केचिद् आहु गोसहचारिणो जुडा गुणाजाढ्यमान्द्यान्द्यो लक्षन्ते ते च गोशब्दस्य वाहिकार्थाभिधाने निमित्त भवन्ति तदयुक्तम् गोशब्दस्यागृहीतसङ्केतम् वाहिकार्थम् अभिधातुमुक्तस्य अत्वात् गोशब्दार्थमात्रबोधनयाश्च विधाय विरत्वात् विरतायाश्च पुनरुत्थानम् अभवत् अन्यैश्च पुनर्गोशब्देन वाहिकार्थो नाभिधीयते किन्तु स्वार्थसहचरी गुणासजातेन वाहितार्थ गुणा एव लक्ष्यते तदप्यनेन नमन्यते तथा हि अत्र गोशब्द्वाहिकार्थः प्रतीयते न वा आद्ये गोशब्दादेव वा लक्षिताद्वा गुणादबिना अविनाभावद्वारा तत्र न प्रथमः वाहिकार्थस्यासङ्केतित्वात् न द्वितीयः अविनाभावलभ्यस्तार्थस्य शब्दे अन्वये प्रवेशासंभवात् शाब्दीयः कङ्क्ष शब्दे नैव पूर्यते न द्वितीयः यदि हि गोशब्दाद्वहिकार्थो न प्रतीयते तादास्य वहिकाशब्दस्य च समानाधिकरणयं संगतं स्यात् तस्मादतत्र गोशब्दो मुख्यया वृता वृत्तया वाहिक शब्देन सहान्वय मलभावा सरिभमानो अज्ञत्वादि साधर्म्य संबंधाद् वाहिकार्थ लक्षति वाहिकस्य ज्ञत्वाद्य अतिसंसबोधनम् प्रयोजनम् इच्छम् इयम् च गुणायुधा गाद गौड़ी चुच्यते पूर्वात्तु अपचा उपचार मिश्रणाश्छुदा उपचारो हि नाम्यात्यन्तं विषकलितो तयोः शब्दयोः पदार्थयोः सादृश्यात् अतिशयं महिम्ना भेद प्रति स्थितत्रमागमनमात्रं यथा अग्निमाण्वकयोः शुक्लपटयोस्तु नात्यन्तभेद प्रतीतिः तस्मादेवमादिषु शुद्धैव लक्षण हिंदी और भेद दिखाते हैं। सादृश्य इति ये पूर्वोक्त आठ प्रकार की हैं, चार सरूपा और चार साध्य साना। लक्षणाएं यदि सादृश्य से इतर भिन्न किसी संबंध के द्वारा सिद्ध हुई हो तो शुद्धा कहलाती है, और यदि सादृश्य संबंध ही इनका प्रयोजक हो तो इन्हें गौड़ी लक्षण कहते हैं। जिस प्रकार 16 भेद होते हैं, सादृश्य से भिन्न कार्य कारण भावादि संबंध भी लक्षणा के प्रयोजक होते हैं। इनके उदाहरण अभी दिए जा चुके हैं। इनमें से शुद्धा लक्षण के प्रयुक्त पूर्वोक्त अश्व श्वेतो धावती इत्यादि भी उदाहरण है। रूढ़ी में गौड़ी सारोपा उपादान लक्षण का उदाहरण देते हैं। एतानि तैलानीति अत्रैति, यहाँ तैल शब्द तिलों से उत्पन्न स्नेह तिल का तेल रूप मुख्य अर्थ का उपादान करके ही सरसों आदि का स्नेह का बोधन हो करता है, अतः यह उपादान लक्षण है। तात्पर्य यह है कि तैल शब्द का अक्षरार्थ है तिलों से उत्पन्न स्नेह, इस कारण तिल तैल ही इस शब्द का मुख्य अर्थ है, किंतु सादृश्य होने के कारण सरसों आदि की स्नेह को ही तैल ही कह देते हैं। उक्त उदाहरण में तिल भाव स्नेह का परित्याग नहीं हुआ है, अतः यह गौरी उपादान लक्षणा है। लक्षण का यहाँ कोई व्यंग प्रयोजन नहीं, तैल शब्द का प्रसिद्धि इस प्रयोग का कारण है, अतः इस रूढ़ी मूलक लक्षण अतः यह रूढ़ी मूलक लक्षण है। एतत् शब्द से विषय का निर्देश है, अतः यह सारोपा है। इस प्रकार इस उदाहरण रूढ़ी मूलक सारोपा गौड़ी उपादान लक्षण का है। प्रश्न, यदि तिल भाव स्नेह भी यहाँ सम्मिलित है तो वाक्यार्थ में मुख्य अर्थ का अन्वय भी बना रहा, उसका बाध नहीं हुआ, अतः यहाँ लक्षणा नहीं होनी चाहिए, क्योंकि मुख्यार्थ के बाद में ही लक्षणा होती है। उत्तर, यहाँ एतत् शब्द से तिल सरसों अलसी आदि के अनेक तेल विवक्षित है यहाँ, और तैल शब्द से केवल तिल का तेल बोधित होता है, अतः इन दोनों पदार्थों का समानाधिकरण से अन्वय नहीं हो सकता, यही यहाँ मुख्यार्थ का बाद है। यद्यपि एतत् पद के अर्थ का एकादश एक देश तिल तैल भी है, परंतु केवल उसी के साथ तैल पद के अर्थ का अन्वय होना असंभव है। इस प्रकार का एक देशान्वय व्युत्पत्ति सिद्ध हो नहीं है। श्री राचतवा, फुल फॉर्म क्या होगा हमको पता नहीं, इसमें लिखा भी नहीं है। प्रयोजन का उदाहरण देते हैं। राजकुमार इति, राजकुमार और उनके सदृश अन्य कुमारों के साथ जाने पर एते राजकुमारा गच्छन्ति, यह प्रयोग होता है। यहाँ एतत् शब्द से विषय का निर्देश होने के कारण आरोप है। राजकुमारों का भी इसमें उपादान है, और अन्य कुमारों का राजकुमारों के तुल्य आदरणीय होना या इस लक्षण का प्रयोजन है। सदृश संबंध इसका प्रयोजक है। इस प्रकार यह प्रयोजनवती सारूपक गौड़ी उत्पादन लक्षण है। इन्हीं दोनों गुण उदाहरणों में से विषय वाचक एतद के निकाल देने से ये साध्यवसाना के उदाहरण हो जाएंगे। यही दिखलाते हैं रूढ़ा वित्त्यादि प्रयोजने इति। रूढ़ी में सारूपा गौरी लक्षण लक्षणा का उदाहरण देते हैं। राजा गौणेन्द्रमिति कंटकम शब्द का अर्थ है काटा। इसकी गौणेन्द्र शब्द के अर्थ राज विशेष के साथ समानाधिकरणीय से संबंध अनुत्पन्न है, अतः कंटकम शब्द सदृश संबंध से कांटे की तरह दुख देने वाले क्षुद्र शत्रु ही लक्षण है। उपलक्षण है। यहाँ मुख्य अर्थ का उत्पादन नहीं है, गौणेन्द्र शब्द से विषय पृथक निर्देश होने के कारण आरोप है। कंटकम शब्द की क्षुद्र शत्रु से में प्रसिद्धि होने से रूढ़ी है। प्रयोजन में इसकी लक्षणा का उदाहरण देते हैं। गौरवाहिक पंजाब का नाम वाहिक देश है। पंचानाम सिंधु षष्ठानामंतरालेषु ये स्थितः वाहिका नाम ते देशा न तत्र दिवसं वसेत। यहाँ वाहिक देश निवासी किसी पुरुष की मूर्खता भरी क्रियाओं को देखकर किसी ने कहा कि गौरवाहिक वाहिक तैल बैल है। यहाँ गौ शब्द सादृश्य संबंध से वाहिक को लक्षित करता है, अतः यह गौरी लक्षण है। वाहिक की अत्यंत मूर्खता का अद्योतन करना प्रयोजन है, शेष वर्णन पूर्ववत जानना चाहिए। उक्त दोनों उदाहरणों से में से विषयवाचक पदों गौणेन्द्र और वाहिक के निकाल देने से ये साध्यवसाना उदाहरण होते हैं। यह दिखाते हैं रूढ़ा इत्यादि क्रिया के बिना केवल गौ कहने से लक्षण का भान नहीं होता और न वाक्य ही बनता है, अतः क्रिया सहित उदाहरण देते हैं। गौर्ज अल्पति जल्प धातु का अर्थ है व्यक्त वाणी बोलना, उसमें कर्तृत्व से गौ का संबंध नहीं हो सकता, अतः लक्षणा होती है। गौरवाहिक इत्यादि वाक्यों में अर्थ ज्ञान के विषय में मतभेद दिखाते हैं। अत्र केचिर इति किसी का मत है कि वाहिक गौ है। इस वाक्य के सुनने पर गौ शब्द से बैल का ज्ञान और वाहिकी शब्द से वाहिक देशवासी की अन्यथा अभिधा शक्ति के द्वारा होता है, किंतु इन दोनों का समानाधिकरणस्य से अन्वय अनुत्पन्न होने के कारण गो शब्द अपने सहचारी जड़त्व मंदत्वादि गुणों को लक्षणा से बोधन करता है और फिर वे ही गो शब्द से अभिधा के द्वारा वाहिक रूप अर्थ का बोधन करने से निमित्त प्रवृत्ति निमित्त होते हैं। इसका खंडन करते हैं तदयुक्त मिति, यह ठीक नहीं क्योंकि एक दो से अभिधान करना अशक्य है। बिना शक्ति ज्ञान के कोई शब्द किसी अर्थ का अभिधान नहीं होगा। तथा युक्तमति, यह ठीक नहीं है क्योंकि एक तो गो शब्द का संकेत शक्तिवाहिक से गृहित होती है, अतः अगृहित संकेत अर्थ का गो शब्द से अभिधान करना है अशक्य है। बिना शक्ति ज्ञान के कोई शब्द किसी अर्थ का अभिधान नहीं करता। दूसरे यहाँ गो शब्द के अपने परशु रूप अर्थ को अभिधा शक्ति के द्वारा पहले बोधन का कर चुका है, अतः उसकी वह शक्ति विरत हो चुकी और विरक्त शक्ति का फिर उत्थान नहीं हो सकता, क्योंकि शब्द बुद्धि कर्मणाम विरम्य पुनर्व्यापारा भाव, यह नियम है। अतः जब यहाँ गो शब्द पहले अभिधा के द्वारा पशु विशेष का बोधन कर चुका है तो फिर लक्षणा के द्वारा जांड्यादि गुणों का बोधन करने के अनंतर दूसरी बार फिर उसकी वह शक्ति जागृत नहीं हो सकती। किसी विषय में दूसरा मत दिखाते हैं अन्य चेत इति। दूसरे लोगों का यह मत है कि गो शब्द से अभिधा शक्ति के द्वारा वाहिक रूप अर्थ का बोधन नहीं होता, किंतु गो शब्द अपने अर्थ पशु विशेष के साथ रहने वाले जान्यादि गुणों के सदृश होने के कारण वाहिक गत जान्यादि गुणों का ही लक्षण से बोधन करता है। इसका भी खंडन करते हैं तदप इति। यह बात भी अन्य लोगों का नहीं मानते तथा इति उक्त मत का विकल्पों द्वारा खंडन करते हैं। अत्र इति यह तो कहो कि तुम्हारे मत में गो शब्द से वाहिक रूप अर्थ की प्रतीति होती है या नहीं, यदि होती है तो गो शब्द से ही होती है, या गो शब्द से लक्षित गुणों से अभिनाभाव के कारण गो शब्द से वाहिक के जन्यादि गुण लक्षित होते हैं और गुण गुणी के बिना रह नहीं रह सकता। यही गुणों का गुणी अर्थात द्रव्य के साथ अभिनाभाव कहता है। तत्र इति, इनमें पहला मत गो शब्द से ही वाहिक की प्रतीति होती है। यह तो इसलिए ठीक नहीं कि गो शब्द का वाहिक के साथ में संकेत ग्रह नहीं है, और दूसरा मत अभिनाभाव द्वारा बोधन भी ठीक नहीं, क्योंकि जो अर्थ अभिनाभाव के द्वारा लब्ध होता है उसका शब्द बोध में प्रवेश नहीं होता। इसमें हेतु देते हैं शब्द ही इति, शब्द संबंधिनी आकांक्षता शब्द से ही पूर्ण होती है। यह नियम है, यह बात शब्दाध्यावहारवादी शब्द अध्याहारवादी के मतानुसार कही है। अध्याहारवादियों के मत में तो अभिनाभाव द्वारा लब्ध पदार्थों का भी संबंध शब्द बोध में होता ही है, अतएव उपाधि शक्तिवाद में अभिनाभाव द्वारा लब्ध शक्ति का शब्द बोध हो में अन्वय होता है। प्रथम बार किए हुए विकल्पों में से द्वितीय विकल्प गो शब्द से वाहिक की प्रतीति नहीं होती का खंडन करते हैं। न द्वितीय इति, यदि गो शब्द से वाहिक की प्रतीति न हो तो गो पदार्थ से के साथ वाहिक का समानाधिकरण ही असंगत हो जाए। इस प्रकार अन्य मतों का निराकरण करके अपना सम्मत पक्ष दिखाते हैं। तस्माद इति, इसलिए न तो गो शब्द से पहले जान्य आदि गुणों को लक्षण द्वारा उपस्थित करके फिर उन्हें प्रवृत्ति निमित्त बना के अभिदा द्वारा वाहिक का उपस्थान करना ठीक है, और न वाहिक के द्वारा गुणों का लक्षण के द्वारा बोधन करना ही युक्तियुक्त है। किंतु युक्त उदाहरण गर्वाहिक में गो शब्द मुख्य वृत्ति अभिदा के द्वारा वाहिक के साथ समानाधिकरण से अन्वित न हो सकने के कारण मुख्यत्वादि सादृश्य संबंध से वाहिक रूप अर्थ को लक्षण द्वारा उपस्थित करता है। व्यंजना के द्वारा वाहिक की मूर्खता आदि की अधिक्य विद्योतित करना इस लक्षणा का प्रयोजन है। इयम च इति, यह लक्षणा गुण अर्थ अर्थात जड़त्वादि साधारण धर्मों का योग अर्थात संबंध होने के कारण गौड़ी कहती है। तात्पर्य यह है कि इस प्रकार की लक्षणाएं जिन साधारण धर्मों के संबंध अर्थात सदृश के द्वारा लक्षार्थ का भान होता है वे गौड़ी कहती है, और पहली गंगायाम घोषा इत्यादि उपचार न होने के कारण सुधा कहती है। उपचार ही गौड़ी लक्षणा का मूल है। उपचार का लक्षण कहते हैं उपचारो है इति, अत्यंत भिन्न अर्थात पृथक रूप से भिन्न भिन्न प्रतीति होने के विषय एक दूसरे के साथ अत्यंत निराकांक्ष दो पदार्थों के भेद ज्ञान का सादृश्य अतिशय अत्यंत समानता के कारण छिप जाना ही उपचार कहता है। जैसे अग्निमाणवक सिंहो भाणवक इत्यादि, किसी ने कहा कि यह बालक सिंह है। यहाँ बालक और सिंह इन दोनों पदों से भिन्न भिन्न अर्थ प्रतीत होते हैं, इनका आपस में समानाधिकरण नहीं हो सकता। जंगल का क्रूर मृगराज और मनुष्य का छोटा सा बालक, ये दोनों भिन्न भिन्न प्रतीतियों के विषय होते हैं। इनमें से कोई एक दूसरे के लिए सकांक्ष नहीं, परंतु अत्यंत भिन्न होने पर भी क्रूरता सुरता आदि समान उदाहरणों के द्वारा अतिशय सदृश होने के कारण इन दोनों में भिन्नता की प्रतीति यहाँ दब गई है। इसी भेद प्रतिस्थानगत गगन को भेद प्रतीति स्थगन को उपचार कहते हैं, और इससे जो लक्षणा होती है उसे गौड़ी लक्षणा कहते हैं। उपचार के लक्षण में आए हुए अत्यंत शब्द की व्यावृत्ति दिखाते हैं। शुक्ल पटयोर इति शुक्ल पट इत्यादि प्रयोगों में यद्यपि शुक्ल गुण और पट रूप द्रव्य भिन्न भिन्न है, परंतु वे सिंह और माणवक की भांति अत्यंत भिन्न नहीं है, अतः यहाँ उपचार नहीं है। तस्माद इति, इसलिए इस प्रकार के प्रयोगों में शुद्ध लक्षण ही जानना चाहिए। संस्कृत वाक्य। व्यंगस्य गुढ़ अगूढ़त्वाद् दीर्घाद्युः फललक्षणाः प्रयोजनेया अष्टभेदा लक्षणा दर्शितास्ताः प्रयोजनम् अरूपव्यंगस्य गूढ़ागूढ़तया प्रतीकं द्विधा भूत्वा षोडशभेदाः तत्र गूढ़ः वाक्यार्थभाव अनापरिपंकबुद्धि भीवभावमात्रभेदः यथा उपकृतं बहु तत्र इति अगूढ़ः अतिस्फुटतया सर्वजनसंवेदः यथा उपदिशति कामिनीनां यौवनमद एव ललितानि अत्र उपदिशति इत्यनेन आविष्कारोत् इति लक्ष्यते आविष्कार अतिशयश्च अभिधेयवत्तस्फुटं प्रतीयते। हिंदी। इस प्रकार इन पूर्वोक्त 16 प्रकार के लक्षणों में 8 रूढ़ी मूलक हैं और 8 प्रयोजन मूलक। उनमें से प्रयोजन मूलक लक्षणाओं के भेद दिखाते हैं। व्यंगस येति प्रयोजने इति प्रयोजन फल में जो 8 प्रकार की लक्षणाएं दिखाई हैं, वे प्रयोजन व्यंग के गुढ़ और अगुढ़ होने के कारण 2 प्रकार की होती है। अतः इनके इस 16 प्रकार के भेद होते हैं। तत्र इति उनमें गुढ़ और गुढ़ उस व्यंग को कहते हैं जो वाक्यार्थ के विचारने से परिपक्व बुद्धि के विभव अर्थात सूक्ष्मार्थ दर्शन सामर्थ्य से ही जाना जा सकता है। साधारण बुद्धि से ज्ञातव्य नहीं होता। यथ इति जैसे उपकृतम बहुतत्र इत्यादि पूर्वोक्त पद्य अगुढ़ उस व्यंग को कहते हैं जो अत्यंत स्फुट होने के कारण सबकी समझ में आ सके। जैसे उपाधि सत इति ललनायो ललनाओं को यौवन का मद ही ललित अर्थात हाव भाव आदि का उपदेश कर देता है। उपदेश देना चेतन का ही काम है और मद जड़ है। अतः ऐसा लक्षण से उपदिश इति का अर्थ आविष्कारोत इति आविष्कारोति प्रकट होता है और आविष्कार का अतिशय जो यहाँ व्यंग प्रयोजन है अभिधेय अर्थ की भांति स्फुट रूप से प्रकाशित होता है। संस्कृत वाक्य। धर्मी धर्मगत्वेन फलस ऐता अपि द्विधा एता अनंतरोक्ताः षोडश भेदा लक्षणाः फलस्य धर्मगतत्वेन धर्मगतत्वेन च प्रत्येकं द्विधा भूत्वा द्वात्रिंशद् भेदाः दिङ्गमात्रं यथा स्निग्धश्यामलकान्ति लिप्यतो वेलद् बलाका घन वाताहसिकर्णः पयोदसुहृद् अमानन्दकेकाः कलाः कामं सन्तु दृढं कठोरहृदयो रामोऽस्मि सर्वं सहे वैदेही तु कथं भविष्यति हा देवी धीरा भव अत्रात्यंत दुख सहिष्णुरूपे रामे धर्मिणि लक्ष्ये तस्यैव वातिशयः फलम्। गंगायां घोषः इत्यत्र तटे सितत्व पावनत्व रूप धर्मस्य अतिशयः फलम्। हिंदी। इन्हीं 16 भेदों में और भेद दिखाते हैं। धर्मी धर्मेत्यादिना एता इति ये अभी कही हुई 16 प्रकार की लक्षणाएं फल व्यंजनागम्य प्रयोग जन के धर्मीगत और धर्मगत होने के कारण फिर दो प्रकार की होती है। अतः इनके 32 भेद होते हैं। कुछ थोड़ा उदाहरण दिखाते हैं। स्निग्ध इति वर्षा के विलासों को उमड़ता हो देख सीता के विरह में कातर भगवान श्री रामचंद्र जी की उक्ति है। स्निग्ध श्याम कांति से आकाश को व्याप्त करने वाले और बलाका जिनके पास विहार कर रही है ऐसे मेघ भले ही उमड़ तथा सीकरी मंद मंद समीर स्वच्छता पूर्वक चले और मेघों के मित्र मयूरों की आनंद भरी मनोहर कुहके भी यथेक सुनाई दे। मैं अत्यंत कठोर हृदय राम हूँ, सब कुछ सहन करूँगा, परंतु अति सुकुमारी कोमल हृदय वैदेही की क्या दशा होगी। हा देवी धैर्य रखना, आकाश निराकार है, उस पर लेपन नहीं हो सकता। अतः इस पद्य में लिप्त पद्य का लक्षण से व्याप्त अर्थ होता है और सौहार्द मित्र चेतन का धर्म है वह जड़ मेघों में नहीं हो सकता। अतः यहाँ सुहृद का अर्थ आनंददायक है। इन दोनों में वाच्यार्थ अत्यंत तिरस्कृत है, इससे इसके वक्ता स्वयं राम ही है। अतः केवल अस्मि कहने पर भी अहम पद की प्रतीति के द्वारा राम का बोध हो जाता है। इसलिए प्रकृत में राम पद का मुख्य अर्थ अनुपयुक्त होने से लक्षणा के द्वारा दुख सहनशील रूप अर्थ का बोधक होता है। मैं राम हूँ अर्थात पिता का अत्यंत योग्य वियोग राम राज त्याग वनवास जटाचीर धारण स्त्री हरण आदि अनेक दुखों का सहन करने वाला अत्यंत कठोर हृदय राम हूँ। मैं सब कुछ सहन कर सकूंगा। यहाँ दृढ़ कठोर हृदय यह पद उक्त लक्ष्यार्थ की उपस्थिति में सहायता देते हैं। राम पद अर्थांतर संक्रमित वाच्य है क्योंकि यह दुख सहिष्णुत्व रूप विशेष अर्थ का बोधन करता है। यहाँ राम पद दुख सहिष्णुत्वेन रूपेण श्री राम जी को ही बोधित करता है और व्यंजना से उन्हीं का अतिशय प्रतीत होता है। अतः इस लक्षणा का धर्म फल धर्मीगत धर्मी अर्थात द्रव्य से स्थित पहले कही हुई दोनों लक्षणाओं पायोद सुहृद लिप्त वियत में लक्ष्य धर्मी का ही अतिशय बोधन होता है। यह सब लक्षण मूलक व्यंग इस पद से प्रतीयमान विप्रलम्भ श्रृंगार के अंग हैं। अत्र इति यहाँ अनंत अत्यंत दुख सहिष्णुत्व विशिष्ट राम इस पद्य में प्रतीयमान विप्रलम्भ श्रृंगार के अंग हैं। अत्र इति यहाँ अत्यंत दुख सहिष्णुत्व विशिष्ट राम धर्मी लक्ष्य है और उन्हीं का अतिशय व्यंजन द्वारा बोधित फल का योजन है। धर्मगत फल का उदाहरण देते हैं गंगायाम घोष इत्यादि। इस उदाहरण में शीतत्व पावनत्व रूप धर्म का अतिशय व्यंजना के द्वारा बोधित होता है। यह व्यंग अतिशय शीतत्व पावनत्व रूप धर्म में रहता है, अतः धर्मगत फल का उदाहरण जानना चाहिए। संस्कृत तदेवं लक्षणा भेदाश्च चत्वारिंशन्मता बुधे रूढ़ा वैष्ठौ फले द्वात्रिंशदिति चत्वारिशन् लक्षण भेदाः किंच पदवाक्यगत्वेन प्रतीकं ता अपि द्विधा ता अरंतरोक्ताश्च चत्वारिंश भेदाः तत्र पदगत्वे यथा गंगायाम घोषः वाक्यगत्वे यथा उपकृतं बहुतत्रैति एवमसतिकृत प्रकारा लक्षणा। वस्तुतः विश्वनाथ जी का यह कथन असंगत है, प्राचीन आचार्यों से भी विरुद्ध है और इनके अपने कथन से भी विरुद्ध है। अतः इन्हीं के अपने शब्दों में स्ववचन विरोध अदेवा अपास्तम समझना चाहिए। गंगायाम घोषः इस उदाहरण में धर्म लक्ष्य ही नहीं प्रत्युत तट रूप धर्मी लक्ष्य है। काव्य प्रकाश में लिखा है गंगायाम घोष इत्यादौ ये पावनत्वादयो धर्मास्तटादौ प्रतीयन्ते। और स्वयं विश्वनाथ जी भी गंगादिशब्दो जलमयादिरूपम पार्थवाचकत्वा प्रति प्रकृते यसंभवन तटादि बोधयति। लिख चुके हैं, इससे स्पष्ट है कि इनके मत में भी तट ही लक्ष्य है जो कि धर्मी रूप है, धर्म नहीं है। इस धर्मी में सीतत्व पावनत्व अतिशय रूप धर्म व्यंजना के द्वारा बोधित होता है। यह बात भी विश्वनाथ जी स्वयं लिख चुके हैं। गंगा तटे घोष इति प्रतिपादना लभ्यस्य सीतत्व पावनत्व अतिशयस्य बोधन रूपम प्रयोजनम। इस प्रकार गंगायाम घोषः, इस उदाहरण में न तो सीतत्वादि धर्म लक्ष्य है और न उनका अतिशय मात्र व्यंग्य फल ही है, प्रत्युत सीतत्वादि से अतिशय फल है और वही व्यंग्य है। अतः धर्मगत फल में उदाहरण में इसे रखना असंगत है। इसके उदाहरण में उपाधि सती कामिनी नाम यौवन मद एव ललितानि इत्यादि पद रखने चाहिए। तदेवमिति रूढ़ाविति। इस प्रकार रूढ़ी में 8 भेद और प्रयोजन में 32 भेद होने से सब मिलाकर लक्षणा के 40 भेद होते हैं और भेद दिखाते हैं। पद इति इति, ये सब अभी कही हुई 40 प्रकार की लक्षणों पद में भी रहती है और वाक्य में भी रहती है, अतः फिर प्रत्येक 2 प्रकार की होती है। तत्र इति उनमें पदगत के उदाहरण गंगायाम घोष इत्यादि है और वाक्य के उपकृतम बहुतत्र इत्यादि है। एवं इति इस उदाहरण इस प्रकार सब मिलकर लक्षणाओं में के 80 भेद होते हैं। संस्कृत अथ व्यंजन विरता स्वभिधा द्यासु ययार्थो बुध्यते परह सावृत्तिर व्यंजना नाम शब्दस्यार्थ अधिकस्य च। शब्द बुद्धि कर्मणां वीरम्य व्यापाराभावः भावः इति नयेन अभिधाल लक्षणात् तात्पर्य ख्यासु तिश्रीषु वृतिषु स्वं समर्थ बोधयितो पक्षिणसु ययान्यो अर्थो बुध्यते सा शब्दस्यार्थस्य प्रकृति प्रत्यादेशश्च शक्तिर व्यंजनम ध्वन गगन गमन प्रत्याय अनादिव्य पदेशा विषय व्यंजनानाम तत्र। हिंदी इति लक्षणनि निरूपणम अथ व्यंजन विरतास्विति। अपना अपना कार्य अर्थ बोधन करके आविधा आदि वृत्तियों के शांत होने पर जिसमें अन्य अर्थ का बोधन होता है जिससे अन्य अर्थ का बोधन होता है वह शब्द में तथा अर्थादिक में रहने वाली वृत्ति व्यंजना कहती है। शब्द इति शब्द बुद्धि और कर्म इनमें विराम के अनंतर फिर व्यापार नहीं होता, जैसे देवदत्त ने किसी के थप्पड़ मारा। अब थप्पड़ लगाने के बाद लाख यत्न करने पर भी वह थप्पड़ लगा नहीं किया जा सकता, उस विरति क्रिया को फिर कोई वापस नहीं कर सकता। एवं रस्सी को देखकर किसी को सर्प बुद्धि हो गई और वह डर गया तो फिर चाहे कुछ यत्न किया जाए पहला ज्ञान निकल नहीं सकता। यह दूसरी बात है कि रस्सी का ज्ञान होने पर पहले ज्ञान की असत्यता प्रतीत हो जाए और अपने डर जाने पर हंसी भी आ जाए, परंतु उस पहले ज्ञान में अब कोई व्यापार नहीं हो सकता, वह नहीं निकाला जा सकता। इसी प्रकार शब्द भी एक बार ही व्यापार करता है, अतएव अपना अपना अर्थ उपस्थित करके आविधा लक्षणा और तात्पर्य नामक शब्द की तीन वृत्तियों के उपक्षीण हो जाने पर जिसके द्वारा और अर्थ बोधित होता है वह शब्द निष्ठ, अर्थनिष्ठ, प्रकृतिनिष्ठ, प्रत्ययनिष्ठ और उपसर्गादिनिष्ठ शक्ति व्यंजना कहती है, और वही व्यंजना ध्वनन, गमन, प्रत्यायन और आदि नामों से भी व्यवहित है होती है। तात्पर्य यह है कि जैसे पदार्थों उपस्थिति के अनंतर अविधा के विरत होने पर गंगायाम, घोषा इत्यादि स्थलों पर तट आदि अर्थ का बोधन करने के लिए दूसरी शक्ति माननी पड़ती है, उसी विरत अविधा को फिर से नहीं उठाया जा सकता। इसी प्रकार जब यह पूर्वोक्त तीनों शक्तियां अविधेय लक्ष्य और तात्पर्यार्थ का बोधन करके विरत हो चुकी तो उसके अनंतर प्रतीत होने वाले अर्थ इन तीनों में से किसी के द्वारा उत्पन्न हुआ नहीं कहा जा सकता, क्योंकि शब्द बोधिर कर्मण्याम विरम्य व्यापार अभाव यह नियम है। अतः उक्त अर्थ को बोधन करने के लिए कोई चौथी वृत्ति अवश्य माननी पड़ेगी, उसी को व्यंजना कहते हैं। व्यंजना अनेक प्रकार की होती है, यह कह चुके हैं, उनमें भी शाब्दी व्यंजना के भेद कहते हैं, तत्र इति अविधेति। लक्षण की व्यंजना दो प्रकार की होती है, एक अविधात मूलक और दूसरी लक्षणामूलक। उनमें अविधामूलक का स्वरूप दिखाते हैं अनेकार्थस एति, संयोग आदि के द्वारा अनेकार्थ शब्द के प्रकृत्योपयोगी एक अर्थ के निर्णित हो जाने पर भी जिसके द्वारा अन्य अर्थ का बोधन ज्ञान होता है वह व्यंजना अभिलाषय अविधा शक्ति के आश्रित समझनी चाहिए। आदि इति इस कारिका के आदि अथवा आद्य पद से विप्रयोग आदि का ग्रहण है। संस्कृत अविधाल लक्षणा मूल शब्दस्य व्यंजना दिधा अविधा मूलमः अनेकार्थस्य शब्दस्य संयोगादैर्य नियंत्रिते एकार्थय अन्य अधिहेतु व्यंजना सब अविधाश्रया आदि शब्दादि प्रयोगादयः उक्तम इह संयोगो विप्रयोगश्च साहचर्य विरोधिता अर्थः प्रकरणं लिंगं शब्दान् शब्दस्यान्यस्य सन्निधिः सामर्थ्यम औचिति देशः कालो व्यक्तिः स्वरादयः शब्दार्थस्य अनवच्छेदे विशेषस्मृति हेतवः इति सामर्थ्यम इति सशङ्खचक्रो हरिः इति शङ्खचक्रयोगेन हरिशब्दो विष्णुमेव अभिध्यते असंखचक्रो हरिः इति तद्वियोगेन तमेव भीमयर्जुनौ इति अर्जुनः पार्थः कर्णा अर्जुनः इति कर्णः सूतपुत्रः स्थाणुं वन्दे इति स्थाणुं शिवः सर्वं जानाति देवः इति देवो भवान् कुपितो मकरध्वजः इति मकरध्वजः कामः देवः पुरारिः इति पुरारिः शिवः मधुना मतः पिकः इति मधुरवसन्तं सतः मधुरवसन्तः पातु वो दयिता मुखम् इति सुखम् इति मुखम् सामुख्यम् विभाति गगने चन्द्रः इति चन्द्रः शशि निशि चित्रभानुः चित्र इति चित्रभानुरिः भाति रथांगम इति नपुंसक व्यक्तया रथांग चक्रम स्वरस्तु वेदैव विशेष प्रतिकृत न काव्य इति तस्य विषयो
भाद्याहतः इदं च के अप्यसहमाना आहुः स्वरो अपि काक्वादिरूपः काव्ये विशेषप्रीतिकुद्कृदेव उदात्तादिरूपोऽपि मुनिः पठोक्तदीशा शृङ्गारादिरसविशेषप्रतीतिकृदेव इत्येतद्विषय उदाहरणम् उचितमेव इति तत्र तथा हि स्वराः काक्वादयः उदात्तादयो वा व्यङ्गस्य रूपमेव विशेषं प्रत्याय अन्ति न खलु प्रकृतो अक्तमनेकार्थ शब्दस्यैकार्थनियन्त्रणरूपं विशेषं किं च यदि तत् यत्र क्वचिद् अनेकार्थशब्दानां प्रकरणादि नियमाभावादि नियन्त्री योर अप्यर्थ योर अनुरूपस्वर वसैक अनैकत्र नियमन्नं वाच्यं तदा तथा विधस्थले श्लेषान अंगीकार प्रसंगः न च तथा अत एबाहु श्लेषनिरूपण प्रस्तावे काव्यमार्गे स्वरो न गण्यते इति च नयः इत्यलमुप जिभ्यानां मान्यानां व्याख्यानेषु कटाक्ष निक्षेपेण आदिशब्दात् एताव अन्यत्रस्तनि इत्यादौ हस्तादिचेष्टादिभिः स्तनादिनां कमलकोरकाद्याकारत्वम् एवमेकस्मिन्नेत्रे अविधया नियन्त्रिते या शब्दार्थस्यान्य अर्थबुद्धिहेतु शक्तिः अविधामूला व्यञ्जन यथा मम तात्पदानां महापात्र चतुर्दशभास अविलासिनीं भुजङ्गं महाकवीश्वर चन्द्रशेखर सन्धि विग्रही कारणं दुर्गालङ्घित विग्रहो मनसिजं समिल्लस्य तेषां प्रोद्द्राकलो गृहित गरिमा बहिष्गृभृतो भोगिभिः नक्षत्रक्ष कृतक्षणो गिरिगुरो गढां रुचिं धारयन् गामाक्रम्यं विभूतिभूषित भूषितनं ततन् राज्यत्यं वाव मावलभ अत्र प्रकरणेन अविधेये मावल्लभ शब्दर् योमानां महादेवी बलभ भानुदेवन्द्रिपतिरूपे यथ नियन्त्रिते व्यञ्जन्येव गौरीबल्लभरूपयर्थो बोध्यते एवमन्यत लक्षण मूलमाह हिंदी संयोगादि का निरूपण करते हैं उक्तम हिति संयोग विप्रयोग साहचर्य विरोधिता अर्थ प्रकरण लिंग अन्य शब्द का सन्निधान सामर्थ्य औचिति देश काल व्यक्ति और सरादिक ये सब शब्द के अर्थ के अनुच्छेदन हैं। तात्पर्य का अनिर्णय अथवा तात्पर्य में संदेह होने के विशेष ज्ञान के कारण होते हैं, अर्थात जब कहीं किसी अनेकार्थक शब्द का तात्पर्य संदिग्ध होता है तो कारणादि के द्वारा विशेष ज्ञान हुआ करता है। संयोगादिकों के क्रम से उदाहरण दिखाते हैं। सशंख चक्र इत्यादि अनेकार्थक शब्द के किसी एक ही अर्थ के साथ प्रसिद्ध संबंध को संयोग कहते हैं। हरि शब्द के अनेक अर्थ हैं, जैसे यमानी इंद्र चंद्र विष्णु सिंहास सुवाजिखु सॉरी सुहाजिषु शुक्राहिद कपिमेकेषु हरेन्ना कपिलेत्रिषु इत्यमरः। परंतु शंख चक्र का संबंध केवल विष्णु ही के साथ प्रसिद्ध है, अतः सशंख चक्रो हरि ही, यह कहने पर शंख चक्र के संयोग से हरि पद विष्णु का ही बोधन होता है। वियोग का अर्थ विश्लेष है और विश्लेष वही होता है जहाँ संयोग को, अतः असंख चक्रो हरि ही कहने पर भी हरि पद वियोग के कारण विष्णु को ही कहता है। साथ रहने का नाम साहचर्य है, यद्यपि भीम पद का अर्थ भयानक है और अर्जुन का अर्थ एक जंगली वृक्ष है, परंतु भीमार्जुनो कहने से दोनों सहचारी पांडवों का ही बोध होता है। प्रसिद्ध वैर का नाम विरोधिता है, कर्णार्जुनो कहने पर प्रसिद्ध विरोध के कारण कर्ण शब्द से सुत पुत्र महावीर कर्ण का ग्रहण होता है, कान का नहीं। प्रयोजन को अर्थ कहते हैं और चतुर्थी विभक्ति आदि में उसका ज्ञान होता है। यद्यपि स्थाणु पद का अर्थ खंभा और शिव दोनों है, परंतु स्थाणु बंदे भवक्षिदे इत्यादि उदाहरणों में संसारोच्छेद रूप अर्थ शिव जी से ही सिद्ध होता है, खंभे से नहीं। अतः स्थाणु पद का अर्थ यहाँ शिव ही है। वक्ता और श्रोता के बुद्धि स्थितता को प्रमाण कहते हैं। सर्व जानाति देवः, यहाँ देव पद का अर्थ प्रकरणगत राजा आदि है, अप्रकृत नहीं। अनेक अर्थों में से किसी एक ही के साथ रहने वाले और साक्षात शब्द से बुद्ध धर्म का नाम लिंग है। स्त्रीलिंग पुलिंग आदि को व्यक्ति शब्द से कहेंगे। यद्यपि मकरध्वज का अर्थ समुद्र भी है, परंतु कुपितोह मकरध्वज इस वाक्य में इस पद से कामदेव का ही ग्रहण है, क्योंकि कोप रूप लिंग समूह में नहीं रहता है। अनेकार्थक शब्द के किसी एक ही अर्थ के साथ रहने वाले पद के वाचक शब्द का समीप्य अन्य शब्द सन्निधि से अभिष्ट है। यद्यपि पुर का अर्थ देह भी है, पुरम देहे अपि दृश्यते, परंतु देव पद के सन्निधान से पुरारी का अर्थ शंकर ही है, देहादि नहीं। मधु पद दैत्य बसंत मध्य आदि अनेक अर्थों का वाचक है, परंतु कोकिल को मस्त करने का सामर्थ्य बसंत ऋतु में ही है, अतः मधुना मतः पीकः, इस वाक्य से मधु पद का अर्थ बसंत ही है। प्रियतमा के कुपित हो जाने के कारण खिन्न पुरुष के प्रति किसी मित्र या सखी की उक्ति है, पातु ओ दैता मुखम, यहाँ औचित्य के कारण मुख पद का अर्थ सामुख्य अनुकूलता है। प्रतिकूलता से खिन्न पुरुष का खेद अनुकूलता को ही दूर कर सकती है, अतः उसी का ग्रहण उचित है। कामार्थ पुरुष के परित्राण की योग्यता दायिता के सामुख्य अनुकूल्य ही में ही है, केवल मुख्य में नहीं। मुख्य यदि कुपित हो तब तो उल्टा भयावह है। औचित्य का अर्थ योग्यता है, यद्यपि चंद्र का अर्थ कपूर आदि भी है, परंतु विभाति गगने चंद्रह, यहाँ चंद्रमा का बोध ही होता है, क्योंकि आकाश देश में वही रहता है। निशी चित्रभानु, यहाँ चित्रभानु का अर्थ अग्नि है, सूर्य नहीं, रात्रि में वही होती है। व्यक्ति का अर्थ स्त्रीलिंग पुलिंग आदि व्यक्ति है। भाति रथायंगम में नपुंसकत्व के कारण पहिए का ही ग्रहण होता है, चक्रवाक की नहीं। स्वर उदातादिक भेद से में ही विशेष अर्थ के निर्णायक होते हैं, जैसे वृत्त शत्रु, यहाँ पूर्व पद प्रकृति स्वर बहुब्रीही का और अंतोदात तत्पुरुष समास का निर्णायक होता है, परंतु काव्य में इसके अर्थ का निर्णय नहीं होता, अतः इसका उदाहरण नहीं दिया। इदन एति, कोई लोग इसको सहन न करते करके कहते हैं कि सरोपैति, काकू आदि कंठ स्वर काव्य में विशेष अर्थ की प्रतीति कराता ही है और उदात आदि स्वर भी भरत मुनि के कथनानुसार श्रृंगार आदि रस का प्रत्यायक होता ही है। नाट्य शास्त्र में भरत मुनि ने श्रृंगार और हास्य में स्वरित उदात तथा करुणादि रस के अनुदात स्वरित कहना चाहिए इत्यादि स्वर नियम लिखा है, इसलिए इसका भी उदाहरण देना ही चाहिए। इसका खंडन करते हैं तन्न इति, यह बात ठीक नहीं क्योंकि काकु आदि अथवा भरतोक्त उदातादि स्वर केवल व्यंग्य अर्थ का ही विशेषता बताते हैं। इस कारण ही कहे हुए अनेक अर्थ शब्द के किसी एक अर्थ को निर्णित करना इनका काम नहीं है। ये स्वर अनेकार्थक शब्द और किसी के एक वर्ष में नियंत्रित नहीं करते किंच एति। इसके अतिरिक्त पूर्वोक्त प्रकरणादि का नियम न रहने के कारण जहाँ अनेकार्थक शब्दों के दो अथवा अधिक अर्थ अनियंत्रित रूप से प्रकट होते हैं, वहाँ अनुकूल स्वर के कारण यदि एक ही अर्थ की उपस्थिति मानी जाएगी तो ऐसे स्थलों में श्लेष का परित्याग करना पड़ेगा। नच एति, परंतु ऐसा है नहीं, स्वर भेद होने पर भी श्लेष माना जाता है। अतएव श्लेषा अलंकार निरूपण के अवसर पर यह कहा है कि काव्य मार्ग में स्वर की परवाह नहीं की जाती, स्वर भेद पर भी श्लिष्ट अर्थ की प्रतीति मानी जाती है, इसलिए उपजीव्य आश्रय भूत और मान्य लोगों की ही की हुई पूर्वोक्त व्याख्या पर कटाक्ष करना ठीक नहीं। कालोह व्यक्ति स्वरादय, यहाँ पर आदि पद से हाथ आदि के चेष्टाएं ली जाती है, यह बताते हैं एतावन नमात्रस इत्यादि एवत्मिति। इस प्रकार अभिधा के द्वारा एक अर्थ के नियंत्रित होने पर भी शब्द के अन्य अर्थ के ज्ञान का कारण जो शक्ति है उसे अभिधा मूला व्यंजना कहते हैं। इसके उदाहरण में अपने पिता का बनाया उदाहरण देते हैं, यथा मम इत्यादि सन्धि विग्रही का, उस मंत्री को कहते हैं जो अन्य राजाओं के साथ व्यवहार्य नीति का निर्णय करे और उनके साथ संधि या विग्रह कराए। दुर्ग इत्यादि, यह पद्य उमा नामक रानी के पति राजा भानुदेव की प्रशंसा में लिखा गया है, अतः प्रकरण के नियम में से उन्हीं का बोध होता है, परंतु शब्द रचना इस प्रकार की है जिससे महादेव परक अर्थ भी व्यंजना से प्रतीत होता है और फिर अंत में इन दोनों राजा और शिव का उपमान उपमेय भाव फलित होता है। दुर्ग इति, दुर्ग से नहीं रोका गया है। विग्रह जिसका अर्थात जो राजा किलों को तोड़कर शत्रु को परास्त करता है अथवा जो किलों में से नहीं मैदान में आकर युद्ध करता है। तेजसा अर्थात अपनी देह छवि से कामदेव को भी तिरस्कृत करता हुआ अभ्युदय से युक्त राजक अर्थात राज समूह को लग्रहण करने वाला अर्थात अनुचर रूप के से राज समूह को रखने वाला गौरव युक्त सुख भोग करने वाले पुरुषों से सब और उपासित छत्रेसों बड़े बड़े राजाओं पर भी नजर नहीं डालने वाला गिरी हिमालय है। गुरु यानी ससुर जिनका उन महादेव जी के अथवा गुरु महत्याम गिरी वर्णयाम गौरव युक्त वाणी यदा सरस्वती में प्रगाढ़ प्रेम रखने वाला विभूति से अलंकृत है। शरीर जिसका वह उमा नामक रानी की प्रियतम राजा सुखदेव भानुदेव पृथ्वी को जीतकर शोभित होता है। इस पद्य में दुर्ग विग्रह समिलयन राजकल भोगी छत्र नक्षत्र इस यानी कि नक्षत्रेश गिरिगुरु गाम विभूति उमा इत्यादि पदों से संकर परक अर्थ भी भाषित होता है। उनमें उमा पद सबसे प्रधान है, यथा जिनका आधा विग्रह देह दुर्गा पार्वती से लंघित आक्रांत और है और तृतीय नेत्र के तेज से कामदेव को भस्म करने वाले राजा अर्थात चंद्रमा की कला जिनके मस्तक पर उदय हो रही है, चारों ओर भोगी से आवृत चंद्रमा के द्वारा देखने वाले हिमालय रूप अपने गुरु में प्रगाढ़ प्रीति रखते हुए भस्म से भूषित हो है देह जिनका वे उमा के प्रियतम भगवान शंकर गौ पर चढ़कर शोभित होते हैं। अत्र इति यहाँ प्रकरण के द्वारा उमा वल्लभ शब्द का उमा नामक महादेवी के वल्लभ भानुदेव निरुपति यह अविधेय अर्थ निश्चित होने पर भी व्यंजना ही के द्वारा गौरी वल्लभ रूप अर्थ बोधित होता है। इसी प्रकार और उदाहरण भी जानना चाहिए। संस्कृत लक्षणोपास्यते यस्य कृते ततु प्रयोजनम् यया प्रत्याप्यते सा स्याद्वयंजन लक्षणाश्रया गंगायाम घोषः इत्यादौ जलम् याद्यार्थ बोधनाय नादभिदायाम् तटाद्य अर्थ बोधनाश्च लक्षणायाम विरतायाम ययासी तत्त्वपावनत्वाद्य अतिशयादि बोधयेत् सा लक्षणामूला व्यंजन अविधामूलक व्यंजना हो चुकी। अब लक्षणामूलक व्यंजना का निरूपण करते हैं। लक्षणोपास्यते इति जिसके लिए लक्षणा का आश्रयण किया जाता है वह प्रयोजन जिस शक्ति के द्वारा प्रतीत होता है वह व्यंजना लक्षणाश्रय लक्षणामूलक कहती है। इसी को स्पष्ट करते हैं। गंगायाम इति गंगाया घोष इत्यादि के स्थलों में अविधा के द्वारा गंगा पद से जलमय रूप मुख्य अर्थ को बोधित करके अविधा के शांत होने पर और तटादि रूप लक्ष्यार्थ का बोधन करने के लिए लक्षणा के विरत होने पर शीतलता और पवित्रता का आधिक्य जिस शब्द शक्ति के द्वारा प्रतीत होता है उसे लक्षणामूलक कहते हैं। संस्कृत एवं शाब्दिम व्यंजनामुक्त्वा अर्थम यः वक्त्रिबोधव्य वाक्यान् नामन्य सन्निधि वाच्ययोः प्रस्तावदेशकालानां काकोश्चेष्ठादि कस्य च वैशिष्ठ्या अदन्यमर्थं या बोधयेत् सा अर्थसंभवा व्यञ्जनेति संबध्यते तत्र वक्तृत्ववाक्य प्रस्ताव देशकालै विशिष्टये यथा मम कालो मधुः कुपित एष च पुष्पधन्वा धीरा वहन्ति रतिखेदहराः समीराः केलीवनीयम् अपि वञ्जुल कुञ्ज मञ्जुरे पतिः कथय किं करणीयमद्य अत्रैतं देशं प्रति शीघ्रं प्रच्छन्न कामकस्तया प्रस्यताम इति सखिं प्रतीकस् कयाचिद् व्यज्यते बोधव्य वैशिष्ठ्ये यथा निःसेप्यच्युतचन्दनं स्तनतटं निमृष्ट रागो अधरो नेत्रे दुरमनंजने पुलकिता तन्वी तवेयं तनुः मिथ्यावादिनी दूती बांधवजनस्याद् ज्ञातपीडागमे वापिं स्नातुमितो गतासि न पुनस्तस्या अधर्मस्यान्तिकम् अत्र तदन्वितचरितदन्तिकमेव गतासि इति विपरिलक्षणया लक्ष्यम् तस्य च रन्तुम् इति व्यङ्ग्यं प्रतिपाद्यदुति वैशिष्ठ्य प्यादबोध्यते अन्यसन्निधि वैशिष्ठ्य यथा उश्च ऋश्चल णिफन्दा भिषणिप पतम्मि रेहै बलाय अणिमल्ल मरगं अभ अण परिठीय शंखमुत्ती बव अत्र बलाकाय निष्पन्दत्वेन विश्वस्त्वं तेनास्य देशस्य विजनत्वं अतः संकेतस्थान मेदात इति कस्यापि सन्निहितं प्रच्छन्न कामुकं प्रतिउच्यते अत्रैव स्थान निर्जनत्वरूपं व्यंग्यार्थ वैशिष्ट्यम् एतद्वैशिष्ट्ये यत् सर्वैशिष्ट्यं प्रयोजनम् भिन्नकण्ठध्वनिनिधिरे काकुरित्यम् अविधीयते इत्युक्तप्रकारायाः काकुर्भेदाः अकारेभ्यो ज्ञातव्याः एतैद्वैशिष्ट्ये यथा गुरुपरतन्त्रतया वतदुरत्तं दुरतरं देशमुख्यतो गन्तुम् अलीकूलकोलीलीते नेप्स्यन्ति सखीसुरभि समये असौ अत्र नैष्यति अपि तर्हि यस्यत्यवेति काका व्यज्यते तिष्ठाम वैशिष्ट्ये यथा संकेतकालमनसंबितं ज्ञात्वा विदग्धया हसत्रेत्रा अर्पिताकुलं लीलापद्यं निमीलितम् अत्र संध्या संकेतकाल इति पद्मनिमिल नादिचेष्टा क्रिया चिद्योत्यते एवं वक्त्रादिनां व्यस्त समस्तानां वैशिष्ट्ये बोध्यम् हिंदी एवं इति इस प्रकार शब्द की व्यंजना का निरूपण करके अर्थमूलक व्यंजना करते हैं वक्त इति वक्ता कहने वाला बोध्यम बोधव्य जिससे बोध बात की जाए वाक्य अन्य का सन्निधान वाच्य अर्थ प्रस्ताव अन्य अर्थ का बोधन करती है वह अर्थमूलक व्यंजना है वक्ता वाक्य प्रकरण और देश काल की विशेषता के कारण उत्पन्न हुई व्यंजना के उदाहरण में अपना ही बनाया पद्य लिखते हैं यथा मम इति काल इत्यादि नायिका अपनी सखी से कहती है बसंत ऋतु का उन्मादक समय है और यदि यह कामदेव कुपित है रति श्रम को हरने वाला घीर समीर मंद मंद चल रहा है अशोक और कुंजों से रमणीय क्रीड़ा के योग्य सा यह छटा सा वन है और पति दूर है हे सखी बता तो सही अब क्या करना चाहिए अत्र इति इस पद्य में यहाँ शीघ्र प्रसन्न कामुक को तू भेज यह बात व्यंजना के द्वारा सूचित होता है बोधव्य की विशेषता का उदाहरण देते हैं निशत्यादि नायक को बुलाने के लिए प्रेषितु किंतु नायको भुक्त और अपने को वापिस नान करके आई बताती हुई दूती के प्रति कुपित नायिका की उक्ति है निहसेति तेरे अस्तन तटों के से चंदन जब सब छूट गया है अधरोष्ट का रंग बिल्कुल साफ हो गया है नेत्रों के प्रांत अंजन से शून्य है और तेरी दुर्बल शरीर पुलकित हो रही है बांधव जन की व्यथा को न समझने वाली हे मिथ्यावादिनी दूती तू यहाँ से वापी में स्नान करने गई थी और उस अधम नायक के पास नहीं गई थी अत्र इति इस पद्य में न पुनस्तस्या धमस्यंतिकम इस अंश से विपरीत लक्षणा का के द्वारा तदंतिकमेव गतासी उसी के पास गई थी यह अर्थ लक्षित होता है और उसका रंतुम रमण करने को यह अर्थ व्यंग है जो कि प्रतिपाद्य दूति के विशेष दशा के कारण बोधित होता है प्राचीन तथा नवीन आचार्यों ने इस पद्य में विपरीत लक्षण नहीं मानी है यहाँ विश्वनाथ जी की ही मत है परंतु इससे इस पद्य का चमत्कार और महत्व एकदम नष्ट हो गया है चित्र मीमांसा और रंग रस गंगाधर में इसकी विशिष्ट व्याख्या है अन्य सन्निधि की विशेषता का उदाहरण देते हुए कहते हैं उग्र अड़िचल इति पश्य निश्चल निष्पन्दा वासिनी सॉरी विसिनी पत्रे राजते बलाका निर्मल मरकत्तमाजनम परिस्थिता शंख सुक्तिरीव। निर्जन वनकुंज में सरोवर के किनारे अपने पास में स्थित निश्चष्ट प्रियतम से नायिका की उक्ति है, हे निश्चल देख कमलिनी के पत्ते पर बैठा हुआ बगला निर्मल मरकत पन्ने की थाली में रखे हुए शंख के समान सुंदर दिखता है। अत्र इति यह बंगले को शंख की तरह एक जड़ पदार्थ की भांति निष्पंदन करने से उसकी विश्वस्तता द्योतित होती है। बंगला निशंक बैठा है सॉरी बगुला निशंक बैठा है, इससे मालूम होता है कि यहाँ यह स्थान निर्जन है और निर्जनता का कारण यह संकेत स्थान है। यह बात कोई अपने सन्निहित प्रसन्न कामुक से व्यंजना के द्वारा कहती है। वच धातु की शक्ति अभिधान में यह बात कोई अपने सन्निहित प्रसन्न कामुक की व्यंजना द्वारा कहती है। वच धातु की शक्ति अभिधान में है और प्रकृत पद्य में संकेत स्थानत्व का बोध अभिधा के द्वारा नहीं होता, व्यंजना के द्वारा होता है। अतः मूल ग्रंथ में उच्चते के स्थान पर बुद्धते कहना अधिक उपयुक्त था। अत्र एति इसी पद्य में व्यंग्यार्थक संकेत स्थान का निर्मलत निर्जनत्व वैशिष्ट यहाँ प्रयोजन है और यह प्रयोजन अन्य सन्निधि वैशिष्ट के द्वारा होता है। वक्ता और बोधव्य इन दोनों से अन्य है, बलाका उसकी सन्निधि वैशिष्ट है, निष्पंदत्व उसी के द्वारा यहाँ इस स्थान का निर्जनत्व व्यंजित होता है। भित्रकंठे इत्यादि पद्य में कही हुई काकु के भेद आकर ग्रंथ नाट्य शास्त्र आदि में जानने चाहिए। बदली हुई कंठ ध्वनि को काकु कहते हैं। एतद इति इसकी काकु की विशेषता का उदाहरण देते हैं। गुरु परेति सुखी सखी से नायिका की उक्ति है। गुरु पिता आदि के अधीन होने के कारण अत्यंत दूर देश में जाने के लिए उद्धत यह मेरा प्रियतम है सखी भ्रमर समूह और कोकिलों से मनोहर बसंत ऋतु में नहीं आएगा। जो गुरुजनों के अधीन है वह अपने मन में उत्कंठा उत्पन्न होने पर भी उनके आगे न कह सकेगा और देश अत्यंत दूर है, अतः अकेले आने की अनुमति भी न पा सकेगा एवं बिना अनुमति के आ भी न सकेगा। यह बात नायिका की उक्ति में से अभिव्यक्त होती है। सखी ने इसी पद्य को अपने गले की दूसरी ध्वनि से पढ़ दिया तब यह अर्थ व्यंजित होने लगा कि गुरु परवश होने के कारण जा रहा है अन्यथा जाता भी नहीं। फिर वसंत समय के में नैस्यति यहाँ क्या नहीं आएगा अर्थात अवश्य आएगा, यह बात काकु से व्यक्त होती है। चेष्टा वैशिष्ट का उदाहरण देते हैं। संकेत इति चतुर सखी ने वीट को संकेत काल का जिज्ञासु जानकर विकसित नेत्रों से भाव बताते हुए लीला कमल बंद कर दिया। अत्र इति यहाँ कमल के मुंद देने के लिए किसी ने यह सूचित किया कि संध्या संकेत का समय है एवं इति इसी प्रकार वक्ता आदि की विशेषताओं के पृथक पृथक तथा मिले हुए उदाहरण जानना चाहिए। त्रैविध्या अदीयम अर्थानाम प्रत्येकम त्रिविधा मता अर्थानाम वाच्य लक्ष्य व्यंग्यत्वेन त्रिरूपतया सर्वा अप्यनंतरोक्ता व्यंजनास्त्रिविधा तत्र वाच्यार्थस्य व्यंजना यथा कालो मधु इत्यादि लक्ष्यार्थस्य यथा निःशेषच्युत चंदनम इत्यादि व्यंग्यार्थस्य यथा उच्चरिचल इत्यादि प्रकृति प्रत्यया दिव्यंजकत्व तु प्रपंच इष्यते शब्दबोध्यो व्यंजन सॉरी व्यंजनक कत्यर्थ शब्दों अप्यर्थांतराश्रम श्रय एकस्य व्यंजनकत्वे तदन्यस्य सहकारिता यतः शब्दो व्यंजकत्वे अर्थांतरम् पेक्षते अर्थो अपि शब्दं तदेकस्य व्यंजनकत्वे अन्यस्य सहकारिता वश्यम् अंगीकर्तव्या अभिधादित अत्रयोपपाधि वैशिष्ट्य त्रिविधो मतः शब्दो अपि वाचकस्तद्वल अक्षको व्यंजकस्तथा अविधोपासिद्धको वाचः लक्षणोपाधिको लक्षकः व्यंजनोपाधिको व्यंजकः किञ्च तात्पर्याख्याम् मृतिम आहु पदार्थान्वयन बोधने तत्पर्यार्थ तदर्थ च वाक्यम तद्बोधकम परे श्लोक नंबर 20 था। अविधाया एकैक पदार्थ बोधन बिरमाद वाक्यार्थ रूपस्य पदार्थान्वयस्य बोधिका तात्पर्य नाम वृतिः तदर्थश्च तात्पर्यार्थ तद्बोधकम च वाक्यमित्याभिहिता अन्वयन वादिनां मतम् इति साहित्य दर्पणे वाक्य स्वरूप निरूपणो नाम द्वितीय परिच्छेदः समाप्ति। हिंदी अनुवाद त्रैविद्यादिति अर्थानमिति अर्थ वाच्य लक्ष्य और व्यंग इन तीन भेदों से विभक्त होता है अतः अभी कही हुई अर्थमूल व्यंजनाएं भी तीन प्रकार की होती है उनमें वाच्य अर्थ की व्यंजना कालो मधु इत्यादि पद में दिखाई है लक्ष्य अर्थ की व्यंजना विपरीत अर्थ के द्वारा निशेष्युते इत्यादि श्लोक में कही गई है और व्यंग्य अर्थ की व्यंजना उच्च रिचल इत्यादि प्रकृति के पद में बताई है प्रकृति प्रत्यय आदि की व्यंजना का विस्तार आगे करेंगे। शब्द बोध इति अर्थ शब्द से बोधित होने पर अभिव्यंजन करता है और शब्द भी अर्थ का आश्रय लेकर ही व्यंजन करता है अतः एक शब्द अथवा अर्थ जहाँ व्यंजक होता है वहाँ दूसरा सहकारी का कारण होता है यतः इत्यादि शब्द अर्थ की और अर्थ शब्द की अपेक्षा व्यंजन में करता है अतः एक की व्यंजकता में दूसरे की सहकारिता अवश्य माननी पड़ेगी। अविधेति अविधा आदि तीन उपाधियों के संबंध से शब्द भी वाचक लक्ष्य और व्यंजक इन तीन भेदों में विभक्त माना जाता है। अविधा शक्ति जिसका व्यापार है वह वाचक लक्षणोपाधिक लक्षक और व्यंजनोपाधिक शब्द व्यंजक कहलाता है किंच इति कोई लोग श्री कुमारिल भट्ट प्रभृति मीमांसाचार्य पदों में से पृथक पृथक उपस्थित पदार्थों के कर्तृत्व कर्मत्व आदि रूप से परस्पर अन्वय संबंध के बोधन के लिए वाक्य का में अर्थ तात्पर्य नाम की शक्ति मानते हैं और तात्पर्यार्थ को उस वृत्ति का प्रतिपाद्य अर्थ मानते हैं एवं वाक्य को तात्पर्य बोधक मानते हैं। अविधाया इति अविधा शक्ति के एक पदार्थ को अलग अलग बोधन करके विरत हो जाने पर उन बिखरे हुए पदार्थों को परस्पर संबद्ध करने करके वाक्यार्थ का स्वरूप देने वाली तात्पर्य नामक वृत्ति है उस वृत्ति का प्रतिपाद्य अर्थ ही तात्पर्यार्थ कहलाता है और उसका बोधक वाक्य कहलाता है। यह अभिहितान्वय वादियों का मत है प्राचीन नैयायिक का तथा कुमारिल भट्ट प्रवृत्ति जो लोग गौ आदि पदों से पृथक पृथक अवस्थित अनवस्थित अनन्वित अर्थ लोग अभिहित अन्यायवादी अर्थात अभिहित अविधा से उपस्थित कार्यों का अन्वय संबंध मानने वाले कहलाते हैं और जो प्रभाकर गुरु आदि पदों से क्रियान्वयी अर्थ की उपस्थिति मानते हैं जिसके मत में पदार्थ एक दूसरे संबंध ही उपस्थिति होती है, असंबंध नहीं। वे अन्वित आभास अविधानवादी अर्थात सब पदों से अन्वित अर्थ का ही अभिधान मानने वाले कहलाते हैं। ये इस वृत्ति को नहीं मानते हैं। अलंकार शास्त्र से तात्पर्य वृत्ति मानी जाती है। अधिकांश आचार्य इसके पक्षपाती हैं। विश्वनाथ कविराज भी इसके पक्षपाती हैं। अतएव पद के लक्षण में अनन्वितार्थ बोध का लिखा है। अनन्वित अर्थ की उपस्थिति अभिहितान्वयवादी ही मानते हैं। मूल में इसी मत का निर्देश किया है, दूसरे का नहीं। इति विमलायाम द्वितीय परिच्छेद। इस प्रकार द्वितीय परिच्छेद समाप्त हुआ।